हो जाए।
अरे स्वामी जी, मैं तो आपको प्रेम से वार्ता किया और बड़े आपकी बड़ी मुझे आनंद आया। ऐसी कथा भागवत कथा नहीं देखी मैं, केशव डबरे जी की कथा सुनता हूँ और उसको वास्तव में आपके वही रूप में देखने जा रहे हैं। और आपने पब्लिक का जो नजरगढ़ मार के वेस्ट किया
के बिहारी लाल की और गुरुदेव महाराज की। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे ओम अज्ञानंतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आज कथा सत्र के चतुर्थ दिवस है। शायद आप लोग को लगता होगा कि ये क्या भागवत आज चौथा दिन हो गया, इसमें अभी प्रारंभिक में पढ़ा है, आगे बढ़ नहीं रहे। बात है कि हम, मैं पहले से बोली दिया था, माफी मांगे लिया था, हम इस प्रकार कथावाचक नहीं हैं। हम तो मंदिर के एक भक्त नहीं, भक्ति करने के लिए प्रयासरत हैं। अपने स्वभाव में बहुत दुष्टता बहुत अवगुण है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत मंदिर संस्था में जो मंदिर है उसमें जो नित्य भागवत सेवया, भागवत के आदेश के अनुसार नित्य प्रति भागवत पाठ होता है, उसमें एक घंटा एक एक श्लोक के ऊपर वाचन करना होता है। तो यही अभ्यास में पड़े हैं क्योंकि इसी से हम लोग आए हैं, इसी संस्था के हैं, उन्हीं आचार्यों को हमारे मथा बैठ चुके हैं तो उनसे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बाहर के जो विधि विधान जो रंग ढंग है ना, हम देखे ना सीखे ना जानते। और आप लोग का गलती है कि हमको बुला के ला क्या बैठा दिए, तो क्या करें, तो ही हम जो जानते हैं वही तो कहेंगे। लेकिन प्रयास करता हूँ, कल किसी ने मुझे कहा कि थोड़ा जल्दी करने के लिए एक एक श्लोक ना जाकर थोड़ा प्रासंगिक से आने के प्रयास करेंगे, लेकिन पहली बार कह रहा हूँ तो इसलिए गलती हो सकता है, अगेन माफी मांग लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित सोनकादि असंख्य ऋषि मंडली के सामने उनके जो कृष्ण विषय के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपक्रम किए थे, आपने गुरु श्री सुखमुनि का वंदना किए, गुरुपाद आश्रय कर चुके हैं, तो उनका प्रश्नोत्तर देना शुरू ही कर चुके हैं। कल उनके जो प्रश्न था महत्वपूर्ण प्रश्न की संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए सबसे कल्याणकारी हितकारी क्या कर्म है और सकल श्रुति शास्त्र के सार क्या है जिसके द्वारा आत्मा सुप्रसन्न हो जाए, और भगवान की अवतार के बारे में बताओ, किस किस अवतार में किन किन कर्म किए, उनके लीला के बारे में, और क्यों उन्होंने वासुदेव देवकी से जन्म लिए, धर्म किसका शरण में गया। लगभग प्रथम स्कंद के इस द्वितीय अध्याय में लगभग चार प्रश्न का उत्तर दे दिया गया, बाकी एक क्योंकि यही सारे प्रश्न के उत्तर ही पूर्ण भागवत में है, उसके साथ और भी प्रश्न जुड़ते गया लेकिन मुख्य बेस यही है, उसी के ऊपर ही भागवती का है। तो उसमें जो द्वितीय अध्याय में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय हमारे आचार्य भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद कहते हैं कि पूरी भागवत में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है दूसरा स्कंद। जब भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद ने ये संस्था भी बनाए नहीं थे, ये स्कंद संस्था बनाने से पहले उन्होंने वृंदावन में एक साधक के रूप में सन्यासी के रूप में राधा दामोदर मंदिर में एक छोटे कमरा में रूप गोस्वामी के समाधि सामने बैठ करके भिक्षा मांग करके एक दिन ही जाते थे, दो चार रोटी इकट्ठा करके लाते थे, उसी को दो चार दिन तक खा लेते थे क्योंकि टाइम ही नहीं होता था बराबर जाके मांग के लाए, कपड़ा पहनने के लिए होता नहीं था उनके अर्थ, थोड़ा वस्त्र खरीद के पहन लूँ, एक ही वस्त्र दो चार जगह फटा हुआ सिलाई किया हुआ उसको पहनते थे धो करके अपने, कोई सेवक नहीं थे उनके पास। इसी अवस्था में अपने गुरुजी का उनको आदेश था, तीन चार बार उनको बोले थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कि अभय तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, अंग्रेजी भाषा में अच्छा ज्ञान है, आप विदेश जाकर के अंग्रेजी भाषा में इस चैतन्य महाप्रभु के और भागवत ग्रंथ के प्रचार करो, इस भारत का जो निधि है इस धन है उसको विदेश में दो। वो नहीं समझ पा रहे थे, वो युक्ति कर रहे थे अभी तो भारत पराधीन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रहा है, जब हम ही खुद ही स्वाधीन नहीं हम दूसरे को क्या बताएं, हम खुद पराधीन है। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने डांट दिया, बोले अरे ये स्वाधीन पराधीन इसके लिए कोई पड़ी थोड़ी है, ये सब बाहरी चीजें देह के लिए है शरीर के लिए, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं ये जो भक्ति ज्ञान है सीधा आत्मा के साथ संपर्क है, आत्मा का कोई स्वाधीन पराधीन क्या है, तो हमें स्वाधीन है पराधीन थोड़ी, आत्मा का पराधीनता केवल यही है कि शरीर के अंदर बंधा हुआ है, यही उसके पराधीन, जब उससे निकाल दो तब स्वाधीन होगा। ये विदेशी को हटा दो, इसमें कोई पराधीन स्वाधीन होता है? इसमें कुछ नहीं। तो उनको समझ में आया, अच्छा बोले जब तक तू पराधीन रहेगा, जब तक ये शरीर के अंदर रहेगा, बंधन में पड़ा रहेगा। इसलिए हमारा एक टाइटल है, कहते हैं क्या, कंडीशन सोल या बद्ध जीव। बद्ध जीव का मतलब क्या है, जो बंधे हुए हैं। बंधे हुए जीव का स्वतंत्रता कैसे रह जाए, बंधे हुए खुद बद्ध जीव में स्वतंत्रता क्या है उसका? तो बोले क्या स्वतंत्रता चाहते हैं, उनको हटाए उनको, ये सब नहीं। तो यही स्वतंत्रता का असली उपाय है, इसको जाके बताओ ना, भारत में बताओ ना। भारत के लोग अभी इतने पाश्चात्य अभिमुखी हो चुके हैं, क्यों नहीं सुनेंगे, सब इंपोर्टेड माल चाहिए, हर चीज इंपोर्टेड चाहिए। तो ये भक्ति को भी इंपोर्टेड करके लाओ तब मानेंगे, वो उसी को लेंगे। अब ये हमारा देसी है ना, उसको नहीं लेंगे। तो वही बात, वही गीता भागवत की, वही भजन की, वही राम नाम की बात को अपने गुरु जी की आज्ञा से उन्होंने विदेश को लेकर इंपोर्टेड करके भारत में लाए। जब वही राम नाम, वही भक्ति को इंपोर्टेड रूप में ग्रहण, तो भारत वाले तो पागल हो गए, तो नजफगढ़ वासी भी क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, है ना नहीं? और ये नजफगढ़ तो मैंने सुना कि ये दिल्ली के साथ है जरूर, लेकिन ये हरियाणा के पार्ट है, ऐसा है ना? दिल्ली में ही है, आप दिल्ली को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे लोग ने बोले, क्योंकि मैं 2-3 दिन से कहीं भोजन में जाता हूँ, बोलते हैं कि हरियाणी डिश है वो, हरियाणा के ये खाना है। ये हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों पड़ा जानते हैं ना? नहीं, हरी आना जाना करते थे, हरी जब रहते थे द्वारका में और उनके भक्त रहते थे हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में, तो आपने परिवार को छोड़ कर, उनका परिवार कोई 5-7 आदमी का छोटे परिवार नहीं था, कितने बड़े परिवार था हरी का जानते हैं? उनके आपने पत्नी कितने थे? हाँ केवल इतने ही पत्नी थे, और सभी के 10-10 लड़के, एक एक लड़की, और उनके भी क्योंकि भगवान जब थे 125 साल तक, उनके तो 4 जनरेशन हो चुका था, और उनके संबंधी सब थे। ऐसे हरिवंश में वर्णन मिलता है भगवान के अपने कुटुंबी जन, अपने जदवंशी का संख्या था केवल 56 करोड़, कितना 56 करोड़। आजकल नेता लोग इलेक्शन में जीतने के लिए कई गांव नजफगढ़ में आते होंगे, एक ही परिवार को चले जाए, केवल एक ही परिवार को वोट मिल जाए, बाकी तो इलेक्शन ही जीते, है ना नहीं? एक ही परिवार में कितने सदस्य थे? 56 करोड़ यादव थे। तो इतने बड़े परिवार में ये द्वारिकाधीश जी शायद ही कभी रुकते थे, भागे आते थे आकर के इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में बैठते थे, यहाँ हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में बैठते, क्यों? क्योंकि भक्त वत्सल है, भक्त के पास भाग कर आते थे, और जब जब बुलाते तब तब भी आते थे, फिर जाते थे फिर आते थे। इस प्रकार जो आना जाना करते थे ना द्वारका से दिल्ली आने के लिए, यही रास्ता होकर आना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ के जो आदिवासी हमेशा वो हरी आ रहे हैं और हरी जा रहे हैं, तो हरी का आना जाना होता था, इसलिए नाम का गाँव का नाम पड़ गया हरी आना, है ना? तो हरी जहाँ ओतप्रोत है, हरी जहाँ आते हैं, तो ये हरी को ही लाना, भागवत का काम हरी को लाना, है ना नहीं? तो स्वामी प्रभुपाद जी ने इस हरि ज्ञान को, इस भागवती ज्ञान को, वही भगवत नाम को, आप जो हमारा बहुत हेरिडिटर क्या बोलते हैं, वंश परंपरा क्रमे पहले से हमारा वंश में, घर में, हमारे संस्कृति में था, जो हम उसको करना नहीं चाहते थे, नहीं ये कि बेकार है, सब विदेशी चीज चाहते हैं, खान पान रहन सहन कपड़ा सब विदेशी चाहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत प्रभु बोले तू भी उनको विदेशी करके ला के दो, वही भक्ति को, वही हरिनाम को इम्पोर्टेड बना के दो, स्टाम्प लगाओ ये अमेरिकन, मेड अमेरिकन। तो उन्होंने यही संस्था को, वही अमर भक्ति संस्था कोई नहीं, जाके विदेश में रजिस्टर्ड कराए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इसका नाम दे करके, वही भक्ति उपाय विधान भजन उसी को इंपोर्टेड करके लाके जब भारत में पहुंचाए, बाप रे यहाँ कोई पूछ नहीं रहते उनको, भिखारी की तरह रहते थे, भिखारी की तरह वृंदावन से दिल्ली में जाते थे, दिल्ली में ही सारे काम करते थे, भागवत लिखते थे, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में आते थे, पैदल में जाते थे, कितने कठिन कितने दुख सहन किए कोई नहीं पूछता था। जब जाके विदेश में जाकर के 1-2 साल के बाद आए, लगभग 40 उनके साथ विदेशी शिष्य आए थे, तो हमारे भारत की प्रधानमंत्री तत्कालीन तोप सलाम देकर उनको स्वागत किए थे दिल्ली हवाई अड्डा में। जाते समय तो मालगाड़ी में गए थे, कार्गो सिक में, मालवाही जहाज में गए थे, कोई पैसेंजर गाड़ी में नहीं। इस हालत में आए लेकिन इम्पोर्टेड आइटम बना करके लाए भक्ति के भजन को, तो ये प्रभाव है। तो अभी भारत में बहुत प्रयास किए थे, प्रचार के नहीं हुआ था। तो इस तो उन्होंने जब उन प्रथम बार विदेश जा रहे थे, जो मैं बोला कि मालवाही जहाज पैसेंजर सीट नहीं, जलदूत इसे कार्गो सिप जिसमें माल सुब जाता था, इसी में कार्टून फाटून के साइड में कैबिन बनाकर वहीं जाते थे। जाते समय बड़े दिक्कत हुआ था उनको, दो दो बार उनको हटाटा भी हुआ था समुद्री तरंग के प्रभाव से। प्रथम बार लगभग महीना दिन यात्रा करने के बाद जलपथ में वो जहाज का नाम क्या था, जलदूत। दूत शब्द का अर्थ जानते हैं, दूत को मैसेंजर बोलते हैं ना, जो खबर लेकर जाता है। तो वे जलपथ में भारत के निधि इस आध्यात्म ज्ञान को जलपथ में दूत बनकर ले जा रहे थे, जैसे राष्ट्रदूत बोलते हैं, तो जलदूत बनकर के वो गए। तो जलदूत जहाज नहीं, स्वयं जलदूत थे, जल मार्ग में हमारे असली मैसेज को लेकर जा रहे थे। सबसे पहले जाके अमेरिका का भूमि पर जब पहुंचा वो जहाज, वो जगह का नाम था बोस्टन, बोस्टन बंदरगाह। वहाँ पहुंचने के बाद तो उन्होंने मन में बहुत विचार किए, जो कैप्टन पांड्या थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैं थोड़ा अमेरिका देखना चाहता हूँ कैसा है, क्योंकि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, मुझे वही फील्ड मिला है, गुरु जी तुम्हें पता है, तो कैसा थोड़ा देखना है। तो बड़े जहाज था वो, तो पास में नहीं जा सकता, छोटी जहाज नौका में फिर उनको भेजे। तो अभय चरण दे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने, लगभग उनका उम्र तभी 70 के आसपास हो चुका था, उन्होंने गए जब प्रथम बार अमेरिका के भूमि में पदार्पण किए और देखे कि कैसा है जागा है। और तभी मैं बोलता हूँ वो 1965 के समय है, उसी समय जो अमेरिका का पहला दर्शन किए, इतने हताश इतने दुखी हो गए, बोले हाय हाय मैं क्या प्रचार करूं, कोई नहीं सुनने वाले, बोले ये कौन आ गया जीव इधर, मैं किस लिए आया इधर, क्या करूं। लेकर गए थे साथ में 40 रुपया और को 3-4 भरी हुए मेटल ट्रंक में भागवत ग्रंथ, वही प्रथम स्कंद का 3 वॉल्यूम वही लेते, वही उनका था संपत्ति। अब इतने दुखी हो गए अमेरिका का जो लोग बाग उनके रास्ता जिस प्रकार के हाव भाव को देख करके आके बोले, तो कोई नहीं बेकार में आया पता नहीं इतने करके आके, आपने कमरे जो कैबिन था जहाज के अंदर कबाट बंद करके रोते रोते अपने डायरी से कुछ लिखे, आप वैष्णव जो भजन किताब में उसको पढ़ेंगे, एक गीत है जिसका नाम है मार्किने भागवत धर्म, मार्किन कहते हैं विदेश को। यहाँ भागवत धर्म प्रचार करने से पहले इस जलदूत सम्राट भागवत धर्म के प्रचारक मुख्य प्रचारक प्रभुपाद जी ने रो रो करके जो अपने मन के बात लिखे हैं, ये कृष्णा मुझे क्यों लेकर आया, क्यों लेकर आया, ये मन के बात को अपने लिखे कवि थे उन्होंने। तो लिखते लिखते इस भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के लगभग 8 श्लोक इसमें लिखे हैं उन्होंने, आप देखेंगे वो भजन पढ़ी बिल्कुल हूबहू 8 श्लोक लिखे हैं। तो उन्होंने प्रार्थना करते थे, मैं आया गुरु जी के आदेश आपके इच्छा से ये लोगों को भगवान के बारे में समझाऊं, भक्ति के बारे में समझाऊं, लेकिन इनके जिस प्रकार के खान पान रहन सहन तो बिल्कुल सुनेंगे नहीं, बोले बोलेंगे कहां से जानवर आ गया ये कपड़ा वपड़ा पहन के, पहले बार देखेंगे इस रूप में। पहले जमाने में जितने जो कोई सब गए थे प्रचारक, सब कोट पैंट टाइप पहनकर जाते थे सूट शर्ट में, ये बेचारे इसी रूप में गए थे, बोले ये कौन से जानवर कौन से चिड़ियाखाने में आ गया, कोई पूछेंगे नहीं सुनेंगे नहीं। तो इसलिए बड़े दुखी होकर के वो प्रार्थना किए, कृष्ण अगर मुझे तू लेकर आया कुछ तो मन में आपका विचार होगा, तो जैसे मुझे नचाओ मैं नाचना चाहता हूं, मैं तैयार हूं, मैं आपके हाथ में खिलौना बनना चाहता हूं। तो लेकिन मैं इतना जानता हूं भागवत पढ़ करके कि अगर आपके कथा उन्होंने सुनेंगे तब निश्चित रूप से उनका हृदय बदल जाएगा। इतने कठोर हृदय जो इतने भौतिकता में ग्रस्त, कचड़ा खाते हैं, कचड़ा पहनते हैं, कचड़ा बोलते हैं, इतने प्रकार के पापाचार में जो व्यस्त हैं, अगर आपके कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनका सुधार होगा, ये तो मेरा परम विश्वास है। लेकिन सुनेंगे कैसे? और मैं उनको बोल नहीं पाऊंगा कैसे, कौन समय इतने ये नहीं है। तो प्रार्थना करके कृष्ण के पास रो रो करके प्रभुपाद जी ने प्रथम प्रार्थना किए, इस संस्था बनाने से पहले, प्रचार करने से पहले दी फास्ट प्रेयर, उन्होंने हाथ जोड़ के रो रो कर भगवान के सामने किए, हे प्रभु अगर मुझे आप कृपा करते हैं तो मैं ही आपसे ही भीख मांगता हूँ कि मुझे ये शक्ति दीजिए ताकि मैं ये विदेशी लोगों को आपके बात को समझा सकूं, यही मुझे कृपा चाहिए, बस और कोई वरदान नहीं चाहिए। ये वरदान मांगे और बोले कि कैसे समझा पाऊं, अगर वो आपके बात भागवत की बात सुनेंगे श्रद्धा से तब तो होगा। तो इसी दूसरे अध्याय के ये श्लोक क्रम जो 8 श्लोकों ने उदाहरण किए हैं जिसमें आया है सुन्नतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदंतस्थई अभद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। अगर कृष्ण के कथा कोई श्रद्धा से सुनेगा तो उसका हृदय के अंदर जन्म जन्म का मैल जो भरा हुआ है सब धोना शुरू हो जाए निकलना। हम कभी कभी आजकल जो ड्रेस पहनते हैं, मैं देखता हूँ लड़के लोग सब मोटे मोटे जीन पहनते हैं। पहले जमाना में हमारे भारतीय का जो पोशाक था धोती कुर्ता था, है ना? नहीं, धोती कुर्ता पहनते ना, पैंट शर्ट सिलाई किया हुआ कमीज कोई था नहीं था, लेकिन सब इम्पोर्टेड हो गए। तो इतने मोटे मोटे आजकल जो जीन पहन रहे हैं उसको मैं तो कभी देखता हूँ साफ कैसे करते होंगे, साफ नहीं करते होंगे, उसको सूखे नहीं, सूखने के लिए तो 2-4 दिन चाहिए शायद उसको, इतने मोटे, और उसको काचेंगे निचोड़ेंगे कैसे? तो मुझे लगता है शायद उसको धोते नहीं होंगे, महीना दिन उसको पहनते होंगे ऐसे दुर्गंध वस्त्र को, है ना? नहीं तो अगर 2-4 महीना पहनने के बाद मैला कुचट्टी लग करके पूरे गंदगी हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए फिर छुट्टी लेकर 2 दिन को साफ करने जाएंगे, गर्म पानी में हाई डिटर्जेंट पाउडर डाल करके निचोड़ के पीट काट करके कितना क्या क्या करना पड़ेगा, उनको मेहनत लगाना पड़ेगा 1 दिन उसके लिए, तब जा करके सफा होगा करके पता नहीं। लेकिन हमारा जो ये हृदय रूपी वस्त्र है, जो हमारा हृदय है, ये पता नहीं कितने दिन से गंदे की इधर भरा रहता है, स्टॉक होते होते कभी साफ कर पाते हैं? कौन सा वॉशिंग पाउडर चाहिए, ना हमारा हाथ यहाँ पहुंचेगा, कुछ पता नहीं। तो उसको साफ कैसे कर सकते हैं? ऐसे कहावत है ना, तन पवित्र है स्नान से, धन पवित्र है दान से, मन पवित्र है हरि भजन से। हरि भजन से ही मन साफ होता है, हृदय साफ होता है। तो केवल यही एक उपाय है जिसके द्वारा, लेकिन हम हरि भजन करने से हृदय साफ हो जाएगा कैसे मान लेंगे? कैसे साफ होता है? हम बाहरी साफ करने देखते हैं, पानी में डालना पड़ता है, भिगाना पड़ता है डिटर्जेंट पाउडर में, फिर काचना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है, धोबी को भी इतना पीट पाट करना पड़ता है, तो अंदर कैसे अपने आप साफ हो जाएगा? तो भागवत कहते नहीं, आप केवल भगवान की कथा को श्रद्धा से सुनो। सुन्नतां स्वकथा कृष्ण, वही भगवान की कथा सुनना ही इतने पुण्य काम है, वही श्रवण और कीर्तन इतने पुण्य है, उसमें इतने प्रभाव है, प्रताप है कि भगवान ने विशति कर्ण रंध्रेण, उन्होंने कान के होल से अंदर घुस जाएंगे, भगवान प्रवेश करेंगे, भगवान घुस जाएंगे ना घुस जाएंगे, क्यों घुसेंगे भाई? ना काम करने के लिए, कौन सा काम? ना धोबी का काम करने के लिए, और कोई काम नहीं करेंगे, धोबी बनने के लिए जाएंगे, धोबी बनने के लिए। हाँ, जैसे धोबी काम देते ना मैला कचड़ा वस्त्र को साफ करने के लिए, ये तो हफ्ता दिन का महीना दिन का कपड़ा साफ करते हैं, कई जन्म का जो मैला हृदय है उसको साफ करने के लिए भगवान एंट्री करते हैं कर्ण रंध्र से, और जाकर के यहाँ सफाई का काम करते हैं, स्वयं साफ करते हैं। हृदि अंतस्थ ही अभद्राणी बी धुनोती, धुनोती मतलब धुलना, विधुनोती विशेष रूप से धुलते हैं अच्छे तरह से क्लीन, धोबी ऐसे नहीं कर पाते हैं इसे क्लीन। विधुनोती सुहूत सता, भगवान आपने कथा कोई सुनता है उनके प्रति इतने वशीभूत हो जाते हैं कि उनका धोबी बनने के लिए पीछे नहीं हटते, छिप करके धोबी बन जाते हैं, छिप करके अंदर घुस जाते हैं और सफाई शुरू करते हैं। बोले तुझे पता ही नहीं चलेगा मैं साफ करूंगा, सफाई काम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार इस भागवत कथा को अगर कोई सुने ढंग से, श्रद्धा से, सही प्रकार से, निश्चित रूप से मन और हृदय निर्मल होते शुरू हो जाएगा, निर्मल होने लगेगा। लेकिन अभी तो प्रश्न ये उठता है, बोलेंगे प्रभु जी गड़बड़ तो वही है, कथा सुनने में मन ही नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं होता, बड़े मुश्किल से टाइम करके आ गए, लेकिन कहीं फोन आता है, इधर जाना, वो करना, ये काम वो काम, सुनने के लिए इच्छा नहीं। अगर टाइम है तब भी बोलते हैं नहीं, थोड़ा टीवी देखते हैं, क्या आ जाएगा इधर बैठ कर, श्रवण करने के लिए इच्छा ही नहीं। आप ये बताओ भागवत कथा सुनने के लिए इच्छा हमारे मंदिर कैसे आएगा? इच्छा ही हो तब तो हम काम करेंगे। तब वही भागवत में कहा जाता है इच्छा कैसे आएगा, कहते हैं सुसुसु सद्धाना नाम, पुण्य तीर्थ निषेवणा, कि अगर सेवा करेंगे भागवत भक्तों के, अगर उनकी सेवा करेंगे तो क्या होगा कि सुनने के लिए सुसुसु सदना शब्द दानाम वासुदेव कथा रुचि, भगवान वासुदेव कथा में रुचि उत्पन्न होता है। कैसे रुचि उत्पन्न होता है? न सेवा से। तभी बात आया, अगर आपका मन में सुनने की इच्छा नहीं होता उसका कारण आप सेवा नहीं कर रहे। भगवान की और भगवान के भक्तों की अगर सेवा करेंगे निष्कपट हृदय से, निस्वार्थ भाव से, तो आपके अंदर से श्रवण लालसा बढ़ेगा, तो सुनेंगे, श्रद्धा पैदा होगा। श्रद्धा के बाद आप जानते नियम दूसरा साधु संग है, ये संग करेंगे फिर। तो इस प्रकार भक्तों की सेवा करना, तो उसके बाद में कैसे सुनूंगा फिर? एक हफ्ता होता है, सात दिन में हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ये जो सफाई के करने के लिए कोर्स थोड़ा लंबा है, कितना न नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु, अभद्र सब नष्ट होगा कैसे, न नित्यम भागवत सेवा डोज एवरीडे चढ़ाना पड़ेगा। ये माया का प्रकोप इतने प्रबल है, ये आधा घंटे के सुनने क्या काम करेगा? हमारे पास जो मोबाइल वोबाइल रखते हैं, चार्ज एक बार कर देते हैं, फूल होने से एक दो दिन चलता ना, नहीं एक दिन में डाउन हो जाता है, एक दिन में खत्म हो, फिर चार्ज करना पड़ता है, तो ज्यादा यूज नहीं करते हैं, फिर भी डाउन हो जाता है चार्ज। तो हमारे बैटरी के ऊपर प्रबल माया की प्रकोप है, अंदर से बाहर से, तो इतने हेवी जल्दी डाउन हो जाता है बैटरी। तो इसलिए डेली डेली सुनना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं डेली एक बार ना, डेली दो बार चार्ज करो, सुबह और शाम दो बार चार्ज करो, तो शायद थोड़ा मेंटेन रहेगा चार्ज, सुबह शाम चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज ये कथा श्रवण, इसलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। जो भागवत का जो अति शक्तिशाली उत्तम श्लोक है उसको अगर डेली आप एक एक पढ़ेंगे श्रद्धा के साथ, तो उसका प्रभाव से आपके अभद्र जो अंदर है सारे नष्ट हो जाएगा। ये उपाय बताए, ये उपाय बता करके तो निर्णय बताते हैं, तस्मात एकेन मनसा भगवान साप्तांग पति, कि इसीलिए तस्मात, इसीलिए जो भगवान जदुपति जो सात्वत पति है, ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, उन्हीं का प्रतिदिन ध्यान पूजन श्रवण कीर्तन करना चाहिए, यही निर्णित मार्ग है। आप जो पूछे थे क्या उपाय है संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, और कोई नहीं, केवल एक ही मार्ग है, भागवत को श्रवण करो। श्रवण करने के बाद क्या करूं न करना है, एकेन मनसा, एक मन लगा करके भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन पूजन आदि आदि करो, यही करना चाहिए। ये डिसीजन दे दिए, बोले ले दे करके बहुत सारे कथा है, लेकिन वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परज्ञाना, वासुदेव परंतप, वासुदेव परागति, वासुदेव ही सब कुछ, जो भी ज्ञान है संसार में सारे ज्ञान का पर्यवेशन भगवान कृष्ण में होता है। जितने तपस्या है सारे तपस्या की लक्ष्य भगवत प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता है। जितने जाग यज्ञ किया जाता है सब केवल कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हुई है, और जितने देवताएं हैं सब उनके अंग उपांग हैं। जितने प्रकार की क्रिया कर्म आदि हो अंतिम गति वही ही है, वहीं से निकलता है, वहीं पंडन करते हैं, वहीं से लय होता है। तो इसलिए बाकी ये सब छोड़ करके उन्हीं में ही रमना लगना वही सिद्धांत है। तो उनका जो भी प्रश्न था उपाय के बारे में, शास्त्र के सार एकमात्र कल्याणकारी उपाय जिसमें मन प्रसन्न हो जाए, बोले ये आत्मा सुप्रसिद्धति, इसी में आत्मा सुप्रसिद्ध भगवान कृष्ण के भक्ति में। भक्ति कैसे करे, किस प्रकार करे, इसी को बता करके तो बोले कि ये मैं अभी अभी परीक्षित के महासभा से बात सुन करके आया। वहां पे मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी साक्षात इस बात को कह करके परीक्षित को परम धाम दिला दिए और सब तृप्त हुए। तो इस बात को सुन करके द्वितीय अध्याय के अंत में सुनकादि ऋषियों ने फिर प्रश्न पूछे, बोले सार क्वेश्चन ना क्या ना आपने बताए, ये भागवत अभी सुनकर के आए, भागवत इतने महान ग्रंथ है, आप थोड़ा बताएंगे भागवत किसके प्रेरणा से, कौन लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, इस महान शास्त्र के बारे में। जब ये बात पूछे तब उसको उत्तर देने के लिए तृतीय अध्याय में शुरू करते हैं उन्होंने। सर ये चौथा अध्याय में बोलेंगे, तृतीय अध्याय में उन्होंने जब ये द्वितीय अध्याय के बारे में बोले कि ये सारे भगवान ही है, वो सारे सृष्टि स्थिति पालन लय सब उन्हीं वही करते हैं। किस प्रकार करते हैं ना, अवतार पहले बोले कि तीन प्रकार के अवतार सृष्टि में करते, पुरुष अवतार आदि करके उसके बाद में प्रत्येक जीव प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं, करके उनको कर्म फलदाता के रूप में सबको कर्म फल भोगाते हैं। कैसे भोगाते हैं ना, अनेक अनेक प्रकार के विफिटिंग शरीर, जिस शरीर में जो भोग को भोग करने के लिए योग्य है ऐसे ही शरीर दिलाएंगे, ऐसे ही मन दिलाएंगे, ऐसे ही स्वभाव दिलाएंगे, ऐसे ही संग दिलाएंगे, दिला करके उसी कर्म का फल भोगाएंगे। करते सब वही है, हमको पता नहीं जब मैं करता हूं, वो कुछ नहीं कोई करता, प्रकृति ही क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, बोलते अहंकार के बस होकर के जो महा विशेष मूढ़ आत्मा वो सोचता मैं ही करता हूं, लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो तो उनके द्वारा कराया जाता। कौन कराता ना, प्रकृति के तीन गुण उसके कंट्रोलर कृष्ण, तो मया धक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस चराचर ब्रह्मांड में चर अचर में जो तीन गुण रूपी माया प्रकृति काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, अंडर माई सुपरिटेंडेंस, मया मेरा अध्यक्षता में काम कर रहा है, मैं इसके ऊपर अध्यक्षता के एक शब्द है अधिकार पूर्वक इक्षण, इक्षण मतलब दृष्टि, कोई अधिकारी बैठा है नजर रख रहा है तो नौकर काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा, जब थोड़ा इधर चला जाए तो बैठ जाएगा सो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं अध्यक्षता मतलब अधिकार पूर्वक इक्षण, अधिकारी रूप में बैठकर नजर रखा हूं, देख रहा हूं क्या कर रहा है, तो माया डर के मारे करता है सारे काम। हाँ? सारे जो देवता सारे आत जात चंद्र सूर्य सब मद भयात, मद भयात बाति वायो, मद भयात सूर्य तपति, मद भयात इंद्र वर्षति, सब मेरे भय से, क्यों, क्योंकि अध्यक्षताम अधिकार पूर्वक इक्षितम, मैं अधिकारी के रूप में नजर डाला हूं उनके ऊपर, देखते हैं हरी उनके नजर पड़ रहा है, आप करना चाहिए काम नजर, वो भी देखते हैं कि कब उनका दृष्टि हटे तो मैं थोड़ा ठग जाऊं, लेकिन वो हमेशा नजर डालते हैं, उनका नजर से बच नहीं सकते कोई, तो इसको बोलते हैं मेरे अध्यक्षता में संपूर्ण ब्रह्मांड के सब कुछ काम अपने आप चलता है। हमको कभी कभी आपके मन में प्रश्न होता होगा, प्रतिदिन टाइम पर शाम हो जाता है, फिर रात होता है, फिर दिन होता है, फिर दोपहर होता है, फिर कैसे होता है, अपने आप होता है क्या, अपने आप तो कुछ नहीं होता, एक लाइट को जलाने के लिए स्विच को अप ऑन करना पड़ता, नहीं तो होगा नहीं, इतने बड़े लाइट वो उसको कोई नहीं, अपने आप से होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात होता है, ये सब कैसे होता है, नहीं उनका पीछे एक इंजीनियर है जो करता है सारे ऑपरेशन, ऑपरेटर बैठा हुआ है। जो अनजान व्यक्ति हैं प्रकृति के चौका चौंध को देख करके उसी को देख कर बोला, अरे क्या विचित्र है। जैसे कोई गांव के आदमी हो, बिल्कुल अनपढ़ है छोटा, उनके गांव में जो पहली बार कोई मोटर गाड़ी जाएगा तो मोटर गाड़ी को देखा, बोली ये तो इतना बड़ा राक्षस इसे आ रहा है, बड़े बड़े आंख उसका, दो लाइट को बम्पर को बोलेगा उसका मूंछ, इतने बड़े मुंह उसका, जो ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, उनका नीचे ऐसे मुंह इतने बड़े देखो बोले, उनको क्या पता कि कोई ड्राइवर उसके अंदर चलाता है, वो नहीं जानता है। तो गाड़ी की देखेगा, गाड़ी की देख के समझ रहा है कि वही चल के आ रहा है, इतनी आवाज कर रहा है, ऐसे दौड़ रहा है। लेकिन थोड़े बड़े होने से जो ज्ञान हो जाता है, बोलते अरे ये गाड़ी तो बेकार है, मरा हुआ है, उसका क्या है, ड्राइवर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, तो सड़ जाएगा तो खड़े खड़े, ड्राइवर ही चला रहा है। ठीक इसी प्रकार हम लोग जब तक अज्ञ रहते हैं, कोरा अज्ञान में रहते हैं, तब इस संसार को देखते हैं कैसे चलता है, कैसे चलता सब होता है, कैसे सब चलता है, अरे इस प्रकृति, अरे कुछ नहीं उसका पीछे भी एक ड्राइवर है, नहीं तो कैसे चलेगा, इस साधारण गाड़ी नहीं चलता, वो कैसे चल पड़ेगा। तो जो परिचालक के रूप में जो चलाता है, उस ड्राइवर को भी एक मालिक नजर रख रहा, तभी ड्राइवर काम करता है, नहीं तो सो जाएगा। तो भगवान ड्राइवर नहीं है, भगवान ड्राइवर कभी मालिक ओनर है। वो बोलते मैं अध्यक्ष हूं, अधिकारी मैं हूं, मैं नजर डालता हूं तो सब ठीक ठाक चल रहा है। तो कर्म फलदाता के रूप में सारे शरीर को ठीक ठीक बना करके, हाथ जिसको जिस प्रकार बना, किसी को दो हाथ दो पैर दें, किसी को ज्यादा दें, किसी को बिल्कुल नहीं दिए, क्यों, जिसको जैसा भोग है इस प्रकार शरीर योग्य शरीर दिए हैं, इसके अनुसार उनको फल भोगाते हैं। अनेक अनेक प्रकार जीव जोनि में वो स्वयं प्रकट भी होते हैं, क्यों प्रकट है, प्रकट ना उनके कल्याण के लिए क्यों प्रकट होते हैं उनको, क्योंकि उनकी इतनी कृपा उनके अंदर है। बोलते कितने दिन तक दुख भोगेंगे वो, उनको उद्धार थोड़ा करना तो है, तो उनके उद्धार के विचार करने के लिए स्वयं प्रकट हो उनको समझाते, भाई क्यों इतने दुख भोगता, चलो मेरे साथ। तो एक प्रश्न उठता है कि जब ये सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ परम पुरुष भगवान है, तो जीव तो अपने कर्म फल के अनुसार आज ही मनुष्य जन्म में है, पता नहीं अगले जन्म काल, जैसे बताया था राज में तो कुत्ता बने, कुत्ता बिल्ली क्या क्या बने, सांप बिच्छू क्या बने, लेकिन भगवान कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, बोलेंगे नहीं अच्छा ब्राह्मण मनुष्य है शरीर, उनका अंदर परमात्मा में रहूंगा, जो सांप बिच्छू बनेगा उसका अंदर नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं। कुर्मी का कीट बिष्ठे के अंदर भी, जो गट्टर में जो कीड़े उसके अंदर भी भगवान घृणा नहीं करते, उनके अंदर जाकर बैठते हैं, क्यों, और दो चार घंटा ड्यूटी करके बैठ के आ जाते हैं, ऐसा नहीं, अविक्षण सह हर समय में रहते हैं, कोई एक ऐसा मुहूर्त नहीं है जब परमात्मा इस जीवात्मा को छोड़ करके अलग हो जाए ना, क्यों, हमारा इतने उदार माता पिता भाई बंधु भी हमको छोड़ देते, ठीक है जाओ जाओ, हमें अगर विदेश का कुछ आ गया अपन, हाँ जाओ जाओ टाटा बाबू मरो जा करके जाओ, बहुत अच्छा। अब बोलेंगे कि हम इस कर्म जानकर हैं बाबू जी, हो जाए बिल्कुल नहीं जाना, दर्द चरित्र सुधार जाएगा है ना, इसे कैसे हो जाएगा, तो शराब नहीं पी पाएगा, सिगरेट नहीं खा पाएगा, इसे कैसे हो जाएगा, ये हमारा अभी दशा है। तो उन्होंने क्यों फिर इतने नीच से नीच जघन्य स्थान में नीच जीव के अंदर जाकर बैठते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि भगवान इतने उदार है, इतने कृपालु है, जीव के प्रति इतने दया उनके अंदर है, वो तरसते रहते हैं, तू मेरा ही अंश है, इतने दुख कर तड़प रहा है, क्यों नहीं आ रहे मेरे पास, लेकिन क्या करे, उनको तो दिए हैं बेचारे को, तो उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहते, जबरदस्ती जिसको ले जाएंगे तो आपको बोलेंगे तो भगवान चाहते हैं तो हमको ले क्यों नहीं जाते, जबरदस्ती लेना नहीं चाहेंगे, जबरदस्ती लेने से फिर मशीन हो जाएगा, भगवान प्रेम चाहते हैं, प्रेम कोई मशीन से नहीं किया जा सकता, मशीन को तो आप स्विच डालो चल कम बंद करो बंद हो जाएगा, तो उसके साथ कोई प्रेम करेगा, मशीन को गाली दो उठेगा, थप्पड़ मारो गुस्सा करेगा, नहीं, तो प्रेम कैसे किया जाएगा, प्रेम को मशीन के साथ नहीं किया जा सकता, प्रेम तो उसी के साथ किया जा सकता है जिसको थोड़ा गाली दो तो रुट जाए, थोड़ा अच्छा बात बोलो तो खुश हो जाए, कोई बात करो कोई है ना संवेदना जिसका अंदर हो चेतना हो उसके साथ व्यवहार प्रेम किया जा सकता है। इसलिए प्रेम कभी अकेला नहीं हो सकता, एक दो व्यक्ति चाहिए। तो भगवान इसलिए जबरदस्ती नहीं करते हैं, वो बोलते हैं मैं सारे सुविधा देता हूं, तू आपने आप राजी होकर मेरे पास आओ तो मुझे मजा लगेगा, मैं खुश होऊंगा, फिर ले जाऊंगा आपको, उठा कर गोद में उठा लूंगा आपको, तो आओ अपने आप, लेकिन जबरदस्ती में करूंगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने हमेशा हर स्थिति में नीच से नीच स्थान में जाकर के हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं, और किस में रहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी समय किसी मुहूर्त में इस दुख में संसार में माया का लाठी खाकर उप जाएगा, बोले टू मच, हे प्रभु अब मैं आपके पास, एक मुहूर्त में तो मेरे और मुंह मड़ेगा, इसी समय में उनको झपट कर उठा लूंगा, इसी के लिए अपेक्षा करके बैठे हैं, कभी नहीं मुंह मोड़ते हैं उन्होंने, बोले एक मुहूर्त में अगर छोड़ दूं शायद इस मुहूर्त में मेरे को देखेगा तो कौन उनको उद्धार करेगा। तो इसलिए 24 आवर ड्यूटी में रहते हैं, हम लोग तो 8 घंटा करके, कभी ज्यादा हो तो ओटी करेंगे और 4 घंटा, लेकिन भगवान इतने कृपालु दयालु है 24 घंटा एक सेकंड भी पलक नहीं डालते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि किसी मुहूर्त में किसी क्षण में अगर इस बद्ध जीव अगर मेरे उन्मुख हुआ तो बाकी कुछ करना नहीं, मैं उसको झींक कर उठाकर ले लूंगा। इसीलिए बिल्कुल रेडी, अपने सब तैयार सामान रेडी कर रखें, लेकिन हम इतने दुर्भागा है मुंह तो उनको विमुख कर दिए, पीछे भगवान खड़े हैं बुला रहे हैं हाथ, हम आगे की ओर देखते हैं माया की ओर मुंह करके बैठे, माया की तरफ उन्मुख कृष्ण की तरफ विमुख हो चुके हैं, ये हमारे वर्तमान की स्थिति है। तो इस स्थिति में भगवान ने इसीलिए अंतरात्मा के रूप में अंतर्जामी रूप में बैठे हैं, जब वो भी नहीं काम कर रहा है अब क्या करते करते बोलते नहीं कुछ शो दिखाना पड़ेगा, कोई माया संसार में फंसे हुए ना तो माया में ही मैं आकर कुछ उनको दिखाऊं, तो इसलिए इसी प्रपंच में इस अप्रपंच से इसी प्रपंच में कभी कोई उतारते हो उतार के अपना सामने कुछ लीला कुछ ड्रामा करते हैं ताकि उन्हें आकर्षण करें, सोचे विचार फिर भी जाए, तो इसलिए अवतार ग्रहण करते हैं। उस वैकुंठ जगत अप्रपंच से अप्राकृत जगत से इसी प्राकृत प्रपंच में उतरते हैं, इस लैंडिंग को अवतार कहा जाता है। केवल जीव कल्याण के लिए अवतार होते हैं, तो अनेक अनेक प्रकार में अवतार लेते हैं, जब जहां जिस प्रकार स्थिति में आवश्यकता होता है अवतार लेते हैं। तो अवतार के बाद में कहना शुरू किए, शुरू करके गिनते गए, बोले सबसे पहले तो सृष्टि की सृजना के पहले पुरुष अवतार कर लिए, 3 पुरुष मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऐसे पहले मैं बता चुका हूं कि 6 प्रकार का मुख्य मुख्य विभाग है अवतार का। तो इसमें अभी वो मुख्यतः लीला अवतार बात कहते हैं, क्योंकि लीला करके ही जीव को आकर्षण करते हैं, बाकी तो ड्यूटी बाउंड होते हैं, लीला के में कभी कभी स्वयं आ जाते हैं, कभी कोई अंशावतार कभी कोई आवेश अवतार इस रूप में आते हैं। तो लीलावतार का गिनाते हैं भागवत प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय में पूरे अवतार की लिस्ट बन गिनाए, बोले सृष्टि जब पहले किए पुरुष अवतार हो गए, गर्भ पुरुष से उनके नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की जो आश्रय है गर्भसाई विष्णु ब्रह्मांड क्रिएट किए, ब्रह्मा जी को क्रिएट किए, तो ब्रह्मा जी आपने अपने सारे जगत को जीव से बना दिए, बना करके तो उसके बाद में चलेगा कैसे, क्षीरदशा विष्णु के रूप में सब जीव के अंदर प्रवेश किए, प्रवेश कर तब उनको फिर सिखाएगा कौन सा काम, तो सबसे पहले बोलते हैं चतुर कुमार बने, ब्रह्मा जी के सबसे पहला पुत्र बने कौन, बोले वही भगवान ही पुत्र बनकर आए हैं, एक साथ में 4 पुत्र बने, उसको चतुसनक कहते हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, इस 4 नाम में प्रथम पिता इस सृष्टि के फर्स्ट फादर वही तो पहले जीव थे, तो उनके पुत्र के रूप में प्रथम पुत्र के रूप में ये 4 कुमार उत्पन्न हुए प्रकट हुए। बुरा ना मानना, सबसे पहले प्रथम पिता के सबसे फर्स्ट एडिशन प्रथम पुत्र ने पितृ आदेश को अवज्ञा कर दी, माने नहीं बाप की बात, ब्रह्मा जी ने बोले बेटो अब सृष्टि करो, बोले नहीं, सीधा सीधा मना कर दिया, बोले नहीं करेंगे, अरे क्यों नहीं करेंगे ना क्यों करेंगे, आप ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, बोले देखो अरे कोई हिस्ट्री आ जाएगी इतिहास में, मेरे पहले पुत्र हुए मेरी एक ही बात को नहीं मानते, ठुकरा दिए, क्यों अब क्यों ज्यादा आलोचना नहीं करेंगे कि जो भी हो नहीं किए। ब्रह्मा जी को एक प्रश्न पूछे, ब्रह्मा जी गुस्सा, बोले इसे क्यों नहीं करते, मैं बापू हूं तुम्हारे, बात मानो। तो बोले ठीक है, हमारे प्रश्न का जवाब दे दो। प्रश्न पूछे तो ब्रह्मा जी के दिमाग खराब हो गया और सर में हाथ देकर बैठ गए। बोले समझ में नहीं आ रही, ये किसे पूछ दी, क्योंकि वो तो भगवत अवतार थे ना, ये कोई ऑर्डिनरी पुत्र थे नहीं, महाजोगी भगवत अवतार थे। तो ये प्रश्न पूछे, ब्रह्मा जी प्रश्न के उत्तर ही नहीं दे पाए। तो वो अखंड लगा, बोले क्या हो गया, मेरे बेटे पूछते मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तो आपने पिताजी को ध्यान किया, उनके पिताजी कौन है, भगवान है। ध्यान के बोले पिताश्री प्लीज हेल्प मी। तब पिताजी देखे अब क्या करूं, ये बड़े उद्धत लड़के पिताजी के बात को तो नकार दिए और उनको उल्टी क्वेश्चन पूछ करके उनको हाल करते हैं। तो भगवान ने वही भगवत और एक अवतार तुरंत लिए वहीं पे, उनको कहते हंसा अवतार। हंस बनकर के आए, क्योंकि परम हंस थे ना, हंस बनकर के आए। जैसे आए तो ब्रह्मा जी देखे, बोले ये कोई साधारण हंस तो नहीं, मैं ही प्रथम जीव हूं, ये प्रथम जीव में सृष्टि का चार कुमार, बाकी कोई प्राणी नहीं, ये प्राणी कहां से आ गया, हंस हंस आया कहां से। तो हंस आया तो हंस को देख करके बोले बेटो ठीक है मेरे बात में मानो, आरती प्लेट लाओ, पूजा करते हैं मेरे बाप ऐसे है। मेरे पिता और तो कोई है नहीं, मेरे पिताजी आए हैं शायद, उनका आरती उतारते हैं। तो बोले आपको किसे पता चला आपके पिताजी है आपके, हमारे दादाजी करके आपको किसे पता चला। तो पता चला पूछ कर देख लो, मुझे तो लगता है और कोई नहीं होंगे, मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे मन को जान करके, उन्होंने आए मुझे हेल्प करने के लिए। तो उन चार कुमार ने उनको प्रश्न पूछ दिए, कास्त्वम मर गए, वही प्रश्न से ही उनको परास्त कर दो। कैसे पूछ लिया आपने, दुर्बुद्धि, कैसे मैं बोलूंगा मैं कौन हूं, मैं शरीर तो है नहीं, मन तो नहीं, बुद्धि नहीं, इसका नाम कैसे हो सकता, कैसे पूछा आपने। इसी के बारे में उनका बुद्धि बुद्धि सब खराब हो गया कास्त्वम पूछ करके फंस गए, उन्होंने उसका समाधान नहीं कर पाए। तो समझ गए कि ये साधारण जीव कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी भी उन्होंने उनको हंस अवतार की पूजा की, तो हंस अवतार में वो शिक्षा दिए, वो यह ज्ञान दिए, सबसे प्रथम कुमार को यह ज्ञान दिए। तो कुमार ने ब्रह्मकल्प में पैदा होकर के सबसे पुराण पुरुष होकर के अभी तक भी हैं, लेकिन 5 साल के लड़के कपड़ा तक नहीं पहने अब तक। आपने आपको पांच बटन जानते ना, टेप रिकॉर्डिंग होता ना, 5 बटन मैंने ऐसे जैसे रहेगा दबा दो, तो आपने आपको 5 बटन दबा कर रखे, मतलब बढ़ेंगे नहीं, है पुराने बहुत लेकिन शरीर नहीं बढ़ेगा, इसी स्टेज में रहेगा, वही बालक अवस्था में है। तो इस कुमार अवस्था में आकर के सबसे प्रथम इस वैदिक ज्ञान को, इस सृष्टि को समझने के लिए भगवत ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, उसको सिखाने के लिए ये आकर के दिए, ये ज्ञान सिखाए। उसके बाद में तुरंत सृष्टि करेंगे, सृष्टि करने के लिए एक दूसरा सृष्टि किए, शंभु हुए जो सु करके, तो धरती के सृष्टि करने के लिए जो आदेश दिए तो धरती ही गायब हो गया था, एक असुर बने थे बाद में, हिरण्यकशिपु उनका भाई था जो हिरण्याक्ष, वो ऐसे चोरी किया, आजकल कोई बड़े से बड़े डकैत हो किसी घर में घुस करके कोई सामान ले जाए, लेकिन घर को उठा के ले जाए क्या, घर को कोई चोरी किया अब तक, सुना मेरे घर ही चोरी करके लिया, बोले घर तो नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट चोरी कर लिया कोई, सुना ये हिरण्यकशिपु आया पूरा पृथ्वी की चोरी करके ले गया, पूरा पृथ्वी को उठा के ले गया अपना नाम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पृथ्वी की उठा करके आपने समुद्र के अंदर डाल दिया, जा वहीं रहो, मुझे जरूरत पड़ने से काम में लगाऊंगा। इतने शक्तिशाली था, इतने शक्तिशाली दैत्य था, पूरा पृथ्वी को आपने अक्ष से उठा करके गर्भ सागर में डाल दिया। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सृष्टि करो, कहा सृष्टि करो, जो मनु शतरूपा को किए, बोले कोई फील्ड नहीं जागा कहा, न पृथ्वी है कहा। ब्रह्मा जी बोले कहां गए भाई पृथ्वी, ढूंढते बोले फिर फंस गए, फिर प्रार्थना किए फिर पिताजी फिर आए, आए तो कैसे आए, वो ब्रह्मा जी ध्यान करते उनके नाक से थोड़ा छींक आया तो निकल पड़े, छींक से छोटा सा लाल सा कोई एक सुरसंग के दाना की तरह निकला, अरे ये क्या निकला, ब्लड आया क्या छींक में, देखते देखते एक सेकंड में बढ़ने लगे पर्वत प्रमाण विशाल हो गए। क्या बने वो? बराहदेव। अब बन करके गर्जना किए तो उनकी पूजा किए, ब्रह्मा जी बोले तुरंत पूजा करो, सब मर्ची फर्ची बुलाए पूजा पूजी करो। तब घुस करके गर्भसागर में धरती को उठा कर लाए। तो ऐसे ऐसे अवतार अनेक, मत्स्य, कुर्मा, बराह, नरसिंह, राम, वामन, बलराम, अनेक अनेक अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी, बुद्ध, कल्कि तक। भागवत में 18 और 19 में कृष्ण और बलराम को भी उन्होंने गिनाए अवतार के रूप में। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग इस मत्स्य अवतार हुए, मीन अवतार सबसे पहले हुए। मीन अवतार में बोलते हैं कि तीन बार एक कल्प में मीन अवतार हुआ है। एक कल्प होता है ब्रह्मा जी के एक दिन, 1000 बार चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, तो उसको एक कल्प कहा जाता है। तो इसमें तीन बार मत्स्य आए थे। भगवान की जब मर्जी तब आ जाए तो उनको क्या पड़ी। अच्छे बनकर आए, जब प्रलय जल में कोई उपाय नहीं मिलता है सो मछली बनकर आते हैं। जब जैसे पानी से कौन सा काम चाहिए, मछली बने। और जो कचड़ा में माल फंस गया बिल्कुल गटर में, क्योंकि समुद्र के जो नीचे कीचड़ होता ना, बहुत पानी है। गर्भसागर, ये हमारे नमकीन सागर नहीं, गर्भसागर जिसमें धरती टिका हुआ नहीं, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, उस नीचे पे उसके तला तल में डाला था लाकर, तो कीचड़ ही कीचड़ था। इसे महा कीचड़ के अंदर कौन प्राणी जा सकता है, कीचड़ में कौन जा सकता है, सूअर ही जा सकता ना। तो भगवान ने इसे भी फिटिंग शरीर लिए, बोले वही अवतार में काम बनेगा। तो जाकर जो माल पड़ा था सुन सुन कर ढूंढ कर उठा लाए धरती को। जब बराहदेव ने धरती को उठा को ला रहे थे तो इसे शोभा हो रहा था शुक्र के रूप में। धरती को अपने थोड़ पर गर्भतल से कीचड़ से उठा कर लेकर आ रहे थे। ओ, हमारे दशावतार के कवि जयदेव जी वर्णना करते हैं, क्या बोलते हैं, बसती दसन शिखरे धरणी तब लग्ना ससिनी कलंक कड़े बनी मग्ना केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे। बोलते हैं कि बसती दसन शिखरे धरणी तब लग्ना, हे प्रभु क्या शोभा आपका है, अरे सुअर है स्वभाव उनका ना, नहीं क्या बताऊं उनके शोभा की वर्णन। आपका स्वभाव तो अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, लेकिन ये जो धरती है, धरणी, सारे कंप्लीट अर्थली प्लैनेट, बोलते आप आपके दाढ़ों के ऊपर उसको धारण करके उठा के ला रहे हैं पानी से। बसती दसन शिखर है, दसन माने दांत, दांत के ऊपरी भाग में उसको बैठा रखे धरणी को। धरणी तब लग्ना, लेकिन देखा कैसे पड़ता है, ससिनी कलंक कड़े बनी मग्ना। ससी मतलब जो चंद्रमा, जब वो मून, फुल मून नाइट, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा के रात की जो चंद्रमा पूर्ण चंद्र होता है, पूर्ण चंद्र जो फुल लाइट, इतने सुंदर रूप उनका, लेकिन उसके बीच में एक धब्बा है काला सा, है ना, नहीं वो ना होता और ब्राइट होता और अच्छा दिखता। बोलते हैं आपके रूप इतने उज्जवल, इतने शीतल, इतने कल्याण प्रद है, इतने शशि जैसा, शशि से तो शशि तो बेकार है, इतने उज्जवल शीतल रूप है उनका, लेकिन उसके अंदर एक कला धब्बा जैसा लगा। क्यों धब्बा, क्या है, नहीं इसी धरणी जो लगे ना, ये बेकार है, ये मैच नहीं करते हैं आपके रूप के साथ। बोले कलंक ही है आपके निष्कलंक स्वभाव के अंदर में, ये जो धरती जो उठाए, धरती कलंक जैसे दिखाई पड़ता है। ससिनी कलंक कले बनी मग्ना, ये कलंक लग गया इसे, धरती को टच किया। तो इसे अलग अलग रूप, पहले मीन रूप लिए महाप्रलय में उद्धार करने के लिए, मछली बने। प्रलय सागर में तो केवल जल ही जल रहता है, जल में क्या हेल्प ले सकते हैं। तो मछली आए और जल में बोले नौका काम करे, नौका ही क्या, पृथ्वी को नौका बनाए, नौका चलेगा, नाभिक कौन है, मछली अपने सिंह में बोले बांध दो उसको, सत्यव्रत मुनि को बोले उसमें बांध दो और मैं घुमाता हूं उसको और आपको उपदेश भी सुनाता हूं, सुनते रहो, आगे चलकर कोई मनु बनेंगे फिर सत्यव्रत महाराज। तो इसे मत्स्य कच्छप भागवत में इसे तृतीय स्कंद में 22 गिनो तो 22 अवतार बनाया जाएगा बताया जाएगा, लेकिन विद्वानों ने बोलते हैं भगवान भागवत ने 24 अवतार लिए, लेकिन अब गिन कर देखो कितना होगा, 22 हो रहा है, क्योंकि 18 और 19 की बलराम कृष्ण हुए, उसके बाद बुद्ध और कल की 21 और 20 ना 19 20 21 22 तो 24 कैसे कहते हैं, वो कहते हैं कि इसी अध्याय में नहीं लेकिन आगे चल करके हंस और हैग्रीव ये दो अवतार का भी वर्णन है इस भागवत में, तो इसलिए 24 अवतार टोटल गिनाते हैं। लेकिन इसको कह करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं मैं 24 अवतार बता दिया लीला अवतार के रूप में, लेकिन इसका मतलब नहीं केवल इतने अवतार, भगवान के अवतार तो असंख्य है, गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं, जब जब जो जो आवश्यकता पड़ता है ऐसे ऐसे जैसे बताया था कुर्मा अवतार उनकी आवश्यकता पर लिए, बरहावतार आवश्यकता पर लिए, प्रहलाद जी को बचाने के लिए सत्यम विधातुम सत्य रक्षा करने के लिए अपने भक्तों का और नरसिंह रूप धारण कर लिए, जब जब जैसा पड़ता है नरसिंह रूप धारण के, क्यों सत्य विधातुम, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके भक्त है, उन्होंने वचन दिए थे कि ऐसे अवतार होगा, उसको बर दिए थे ना, तू ये नहीं मर सकता, ऐसे नहीं मर सकता, ऐसे नहीं मर सकता, कोई प्राणी से मेरे बनाए हुआ कोई प्राणी से मर ही नहीं सकता, मैं जितने प्राणी बनाया इनके द्वारा मर नहीं सकता, कोई अस्त्र में नहीं मरेगा, शस्त्र में नहीं मरेगा, घर में नहीं मरेगा, बाहर में नहीं मरेगा, सारे कंडीशन लगा दिया था, तो सारे कंडीशन को आज इट इज सत्य प्रमाणित करते हुए आए, तो इसलिए एक अद्भुत रूप लिए नरसिंह रूप। तो ब्रह्मा जी के सृष्टि के अंदर प्राणी नहीं थे ना, कोई जितने चिड़ियाखाना है इंटरनेशनल कोई प्राणी नहीं मिलेंगे, हाफ लायन हाफ म्यान। हम डेली जो नरसिंह वंदना गाते हैं इसमें क्या गाते हैं, तब कर कमल बरे नख मधुत श्रृंगम, उसका अर्थ को जानते हैं क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके कर जैसा क्या है, कर्म हाथ आपके कर कैसा है, कमल, तब कर कमल बरे माने वरिष्ठ, बहुत सुंदर श्रेष्ठ कमल है आपके हाथ, कर कमल है आपका, इस कमल कितने मुलायम होता है, अच्छा होता है ना, लेकिन अद्भुत बात यही है कि इसमें नाक इतनी बड़ी बड़ी नाक, ये पद्म फूल में नाक कैसे आता है भाई, पद्म फूल सिंह कहां से आया, इसी को बोलते हैं अद्भुत, तब कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगम, ये कमल के ऊपर बड़े बड़े नाक हिमालय के वरिष्ठ श्रृंग की जैसा उठा हुआ है, क्योंकि हथियार बनाया ना उसमें, बोले कोई अस्त्र सत्य नहीं, ये अस्त्र ना शस्त्र, नाक सजीव भी है निर्जीव भी है, नाक को आप बोलेंगे सजीव है, बोले नहीं सजीव भी नहीं तो निर्जीव भी नहीं है, ये बीच बीच में आता है, नाखून एक ऐसा चीज है ना तो सजीव है ना निर्जीव है, उसका तत्व कुछ अलग है। तो भगवान ने इसे अस्त्र शस्त्र किसी में नहीं आएगा, नाखून कोई अस्त्र है क्या, ना शस्त्र है, किसी में नहीं आता, तो इसी में मारेंगे हिरण किसी को, सारे सत्य को जो जो कंडीशन लगा लिया था सारे सत्य को बिल्कुल पूरा किए, ब्रह्मा जी के सत्य को पूरा किए, बोले ब्रह्मा जी अकेले भक्त और के भक्त नहीं था क्या, भक्त और कौन थे, नारद भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो भक्त थे, बोले नहीं आप तो हमेशा भक्तों को रक्षा करते हैं, उनको भजन मंदिर भक्तों की रक्षा करेंगे, तो बोले हाँ रक्षा करूंगा जब तक समय आएगा मैं रक्षा करूंगा, उनके बात को सत्य प्रमाणित किए, और भक्त थे नारद जी के चला प्रहलाद, वो के भक्त नहीं था, वो बोला अभी अभी उनके पिताजी बोले तू बदमाश मेरे लड़का होकर के इतने ताकत तेरे अंदर कहां से आता है, मैं परेशान हो गया मारते मरते, तो मरता ही नहीं, मरता भी नहीं डरता भी नहीं, हाँ, क्या हो गया था? क्या क्या उपाय में कर डाला, ना तो मरता ना तो डरता है, हाँ? कहां से तुझे इतने साहस शक्ति मिलता है। तो बेटा प्रहलाद बोलता पिताजी पावर हाउस तो एक ही है, पावर हाउस एक ही है, वहीं से आता है करंट, आपको भी आता है मुझे भी आता है, कौन पावर हाउस है, ना श्री हरि है, वो मेरा शत्रु है, मैं उनसे लूंगा बिल्कुल नहीं, मैं उनसे देने पर भी नहीं लूंगा, वो मेरा शत्रु है, मेरे भाई के मारा है, मैं तो उसको मार दूंगा। बोला नहीं, ओ बोले आप मानो चाहे ना मानो सप्लाई तो वहीं से आता है, तुझे वहीं से मिलता है, मुझे तो नहीं मिलता होगा जरूर, तुझे वहीं से मिलता ना मिलता, ना तुझे बता सकता वो है कहां, पहले उसको मारूंगा बाद में तुझे मारता हूं, हाँ तो जहां से सप्लाई आता पहले उसको खत्म करता हूं। बोले बता बता सकता हूं वो कहां है, तू तो मरना ना तो देखूंगा तुम्हारे बेटा, पहले उनको मार दूं तो तू बदल जाएगा, वो कहां है बताओ। तो पिता हिरण्यकश्यप से बेटा को जो पूछे, बेटा बताओ तेरे हरि कहाँ है, तो प्रहलाद बिल्कुल निडर होकर बोले, पिताजी कहाँ है, सब जगह में है, सब जगह में है, मेरे राज्य में तो नहीं है, मेरे राज्य में कहीं छिपा हुआ होगा, लेकिन मेरे घर में यहाँ है क्या, इस भवन में है, इस भवन में, चारों तरफ देखा कहाँ है, इस सभा भवन में, हाँ यहीं पे है, यहाँ पे कहाँ है, झूठ बोलता है, यहाँ पे कहाँ है, कहाँ, आपके सामने, मेरे सामने, मेरे सामने तो खंभा है, मेन पिलार है, इस पिलार में है, दृश्यते, मैं देख रहा हूँ, बैठ रहा है, बैठे मुझे दिखाई पड़ रहा है, हाँ तुझे दिखाई पड़ रहा, बैठे इधर, बोले शायद मेरा आंख खराब हो गया, तुझे दिखाई पड़ रहा, मैं नंबर नहीं बदला अभी तक, अभी उसको मारता हूँ, चलो अब पता, तू तो मुझे झूठ तो नहीं बोलेगा, वही है ना, और उसको पहले मारता हूँ बाद में तुझे मारूंगा, खड़ग लेकर के निकाल लेते मारने के लिए, बोले एक मुक्का मारूंगा पिलार को, वही खत्म कर दूंगा, मर जाएगा वो बैठा होगा तो, और क्या, देखे ना देखे मार दो उसको, पिलार को एक महामुष्टि प्रहार किए, तो बेटा भक्त प्रहलाद के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए कि मैं ये पिलार में भी हूं, इसी बात को सत्य करने के लिए अद्भुत रूप प्रकट कर दिए खंबे में। उनका पिताजी कौन बोले, मिस्टर खंबा, और कौन होगा, उससे तो निकले, और क्या, स्तंभ से निकले, स्तंभ ही उनका होगा पेरेंट, और कौन होगा तो खंबा से निकल करके और उनको तो नाखून से फाड़ के मार दिया, जो सारे सत्य प्रमाणित कर दिए, नरसिंह रूप, बामन रूप, बामन रूप बने। अब सारे असुर लोग ने लड़ाई झगड़ा करके अपने बड़े भाई देवताओं को घर से निकाल दिया, भागो, और उनका संपत्ति सब हड़प लिए, पूरा इंद्रपद ले लिए, स्वर्ग अधिकार करके बैठ गए। तो बेचारे रोते रोते जंगल में घूमते मारते फिरे इंद्र आदि देवता सारे, जाकर के क्या कहें, जाकर के बोले फिरा ध्यान के माँ के पास, उनके माँ कौन थे, अदिति, अदिति के बोले, और अदिति के पति कश्यप जाकर उनको बोले, बोले आप तो सबके पिता हैं, असुर भी आपके पुत्र, देवता के पुत्र हैं, वो अदिति के पुत्र, वो ये मेरे पुत्र, आपस में वो लड़के लोग लगड़ा झड़ा लड़ाई झगड़ा करके अपने संपत्ति सब ले लिए, छीन कर ले लिए, वो बेचारे बेघर होकर घूम रहे हैं, थोड़ा मदद करो, आप भी कुछ करो, आप पिता हैं, बहुत प्रार्थना किए। तो कश्यप जी अदिति माता के प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उनको एक व्रत बताए, बोले आपके व्रत करो, मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, जो करने वाले वो करेंगे ठीक ठाक, जैसे कि जो मेंटेनर है, आपने पोस्ट लिए हैं, मैं ही मेंटेन करता हूँ, मेंटेन करेंगे जो गड़बड़ी है तो देखेंगे वो। तो उनके एक व्रत बता, बोले ज्यादा कष्ट नहीं बताता हूँ, केवल 12 दिन में हो जाएगा, केवल द्वादश दिन में, इस व्रत का नाम है पयव्रत, आप पढ़ लेना अष्टम स्कंद भागवत में, पयव्रत करके एक व्रत की विधि बताए उनको। व्रत क्या है, पय मतलब दूध, दूध पी के रहना और कुछ नहीं खाना, 12 दिन केवल दूध पी के रहना, और भी कुछ नीति नियम है बता दिया उनको। और अदिति माता बिल्कुल स्ट्रांगली कड़क से व्रत को किए। 12वां दिन भगवत दर्शन हो गया, 12वां दिन में भगवान आगे प्रकट हो गए, दर्शन दिए, बोले मां तेरे में प्रसन्न हो तेरे ऊपर, अब तेरे बेटा बनकर आऊंगा, तेरा क्या इच्छा है बोलो ना, मेरा इच्छा क्या है, मेरा इच्छा है मेरे बेटों का ये हाल बेघर रहकर घूम रहे, उनको घर दिला दीजिए, उनको अपने जगह दिला दिया, उनके घर बेचारे घूम रहे, वो निकाल दिया उनको घर से, बोले कोई बात नहीं उनको घर दिला दूंगा, घर दिला दूंगा तो बोलकर आ गए, कैसे दिलाएंगे, अब चिंता में पड़ गए भगवान, बोले कैसे दिलाऊं, क्यों, क्योंकि जो दूसरे लड़के थे असुर थे बलि आदि, उन्होंने ब्राह्मण आचार्य शुक्र के शिष्य बने थे, और शुक्राचार्य को ऐसे सेवा करते थे, उनको प्रसन्न किए थे, और इतने दान दान करते थे, यज्ञ आदि करते थे, तो भगवान के एक वचन है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताच, कोई गो सेवा करेगा, ब्राह्मण सेवा करेगा, यज्ञ सेवा करेगा, तो भगवान उसके पास नहीं जाएंगे, मारेंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे, बोले सो कैसे फिर करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, बोले उनके साथ तो झगड़ा लड़ाई कर नहीं सकता, तो ब्राह्मण्य देव है, ब्राह्मण भक्त है, दान आदि करते हैं, तो उनको मैं कैसे लड़ाई झगड़ा मारूंगा, पिटूंगा कैसे, उनको नहीं मारूंगा, मारूंगा तो नहीं, उनको वचन दे दिया माँ को, उनको राज्य दिलाना है, उन लड़कों कैसे दूंगा फिर, उनसे कैसे लाऊंगा, विचार कर रहे थे, विचार कर रहे थे, इधर बलि यज्ञ करते जा रहा था, क्योंकि इंद्र पद को तो छीन के लिया था, लेकिन जानता है पोस्ट को पूरा दिन रखने के लिए मुझे 100 यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, इंद्रपद के लिए सतक क्रतु होना पड़ेगा, 100 यज्ञ पूरा करना पड़ेगा। तो फटाफट यज्ञ करते जा रहे थे, 100 पूरा हो जाए तो मेरे दृष्टि हो जाए, पक्का हो जाएगा, मेरा नाम पट्टा हो जाएगा। तो पट्टा अपना नाम करने के लिए तो फटाफट यज्ञ करते जा रहे थे, तो वो गड़बड़ होते, भगवान बोल कर गए उनका यज्ञ तो बढ़ते जा रहा है, वो जा करके 90, 91, 92, 94, 95, 98, 98 आने सब तक पहुंचने वाला है, 99 यज्ञ हो रहा है तो विकल हो रहे अदित माता। तो फट से एक दिन प्रकट हुए भगवान, कश्यप और दिति माता के गर्भ से प्रकट हो गए। प्रकट तो हुए बिल्कुल चतुर्भुज, बोले मैं अभी आ गया, अब चिंता मत करो, अब करा दूंगा काम। कैसे कर देंगे? फट से उनके सामने देखते ही देखते बटु वामन, इतने छोटा सा बोना, ब्राह्मण का लड़का थे कश्यप जी, तो ब्राह्मण है, ब्रह्मपुत्र है, छोटे से बोना बन गए। क्यों भाई बोना बन गए? बोने समझते ना द्वार्फ, क्यों बोने बने? क्योंकि भगवान उनसे राज्य लेकर आना था ना, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते, वो भगत हैं, ब्रह्मण्य देव हैं, यज्ञ दान आदि करते हैं। बोले उनसे मांग करके लाऊंगा, और क्या करूं, मांग कर ला के दे दूंगा। मांगने वाला हमेशा छोटा होना चाहिए, दाता हमेशा बड़ा, और ग्रहित मांगने वाला हमेशा नीचे होकर घात पताने वाला होगा। तो बोले मुझे हाथ पताऊंगा जाकर, मुझे छोटा ही होना पड़ेगा, ब्राह्मण होना पड़ेगा, ब्राह्मण ही भी क्या मांग सकते। इसलिए बटु ब्राह्मण ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बने, जेनी फेनी डाल करके चिता छत्र छत्री कमंडलों दंड लेकर के पक्का ब्रह्मचारी वेश पहन करके बौना ब्राह्मण छोटे बन करके गए। सीधा बोले मैं अभी जा रहा हूं। अरे इसे किसे जा रहे? अब गए, बोले देखो मैं काम तो करने से गया, सुन क्या हूं। और जा करके बलि अपने यज्ञ कर रहे थे, बोलते हैं जागा उनका है भृगु कक्ष। अभी आप कभी सूरत बड़ौदा से सूरत जाएंगे, एक स्टेशन आते भरूच, इसी भागवत में वर्णन आया, नर्मदा तटी का तट का जब सागर में जो नर्मदा मिलता है उस उत्तर दिशा में, उस दिशा पर भृगु कक्ष है। तो इसका अभी अपभ्रंश नाम है भरूच, वहां है वो जागा जहां पे बलि महाराज ने यज्ञ कर रहे थे, शतकृत यज्ञ। उस यज्ञ स्थल में जाकर पहुंच गए, इन्विटेशन तो था नहीं, यज्ञ में किसको अनुष्ठान में किसको बुलाना पड़ता ना, आप लोग को इन्विटेशन पर्सनल होंगे, बोर्ड बोर्ड अनाउंस किया गया, होर्डिंग बोर्डिंग लगाया गया, कोई भी आओ कोई भी आओ, ऐसे से किसी को नहीं बुलाया, सब सिलेक्टेड को बलि महाराज ने इन्विटेशन कार्ड देके बुलाए थे, ये ब्राह्मण को बुलाया नहीं, बिन बुलाए गए जाकर। बोले मुझे तो परमिशन एंट्री तो नहीं होगा गेट से, मैं तो बिन बुलाया, मेरे पास कोई गेट पास नहीं है, है ना, नहीं कूपन मेरे पास है नहीं, तो क्या करेंगे? छोटे बने ब्राह्मण बने गेट के बाहर खड़े होकर के फुल आवाज भल्ल में सामगान किए, वेद पाठ किए, ऐसे सूर से ऐसे वेद पाठ किए कि अंदर जो सब बड़े बड़े होता उद्गाता उधुर जीव आचार्य ब्राह्मण सब थे, और बड़े बड़े सब ब्राह्मण और सब बैठे थे, उनका कान में जो वेद पाठ जो मंत्र ध्वनि पड़ा, बोलते कौन ऐसा मंत्र ध्वनि कर रहा, कौन ऐसा गायन कर रहा, इतने विचित्र स्वर सुष्टव, इतने विचित्र गला, विचित्र उच्चारण कौन है, कौन है, उनका हाथ पात काम नहीं किया, सब स्वाहा आ ऐसे ऐसे देखने लगे, कौन साउंड कहां से आ रहा है, हाथ नहीं चलता है, मुख नहीं चलता है। केवल उनका नहीं, जितने और सब बैठे थे, राजा बलि पर्यंत शुक्राचार्य पर्यंत सब खड़े होकर सब कान उठा करके आंख उठा कर देखने लगे। बोले गेट की तरफ, मेन गेट की तरफ से आ रहा है, सिक्योरिटी फिक्योरिटी चेक किया, सब अंदर वाले बाहर चले आए, अब वो अंदर जाना था, वो अंदर वाले सब बाहर आए, आ करके देखे कि छोटे बालक ब्रह्मचारी ऐसे पाठ करता बिना साउंड सिस्टम में, तो देख करके बोले बाप रे बाप, बलि महाराज से घोषणा कर लिए मेरा जीवन तो धन्य हो गया, क्योंकि मैं दान करता था यज्ञ में, अब मेरा यज्ञ पूर्णाहुति होना है, इसी समय ऐसे योग्य ब्राह्मण मिल गया मुझे, उनको अगर मैं दान देकर तृप्त कर दूं मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, ऐसे करके घोषणा किया। सब ब्राह्मण बोले वाह महाराज, ये ब्राह्मण क्या रूप है उनका, क्या रंग है, क्या गला है, क्या बोली है। अब बोले आओ आओ ना, मेरे पास कोई गेट पास निमंत्रण, अरे आओ निमंत्रण क्या, आप तो महा हमारा अतिथि है, हम डायरेक्ट आए आपको लेने के लिए, सारे समुदाय ब्राह्मण समेत राजा रानी सब उनको लेकर गए, लेकर के उनको फिर पैर धोए, बोले हे जैसे ब्राह्मण पक्का ट्रीटमेंट करेंगे आपको, बर्तन ला करके पैर धोए। देखिए जिस पैर को धोने के लिए बड़े बड़े जोगिंद्र मनिंद्र देवेंद्र भी अभी तक कर नहीं पाए, ब्रह्मा तक शिव तक नहीं कर पाए, भाग्य नहीं मिला, ये असुर बलि कौन सा जप तप साधन कर रहा था? वो देवताओं को मारपीट कर भगा दिया था, असुर पोष्ट में था, कैसे उनको भगवान ने इसे दे दिए काम? इतने हेतु की कृपा, भिन्न बुलाए, उनका यज्ञ स्थली में गए, मंत्र बुलाकर उनको बुलाए और पैर धुलाए उनके। ये रहस्य है। तो पैर धो करके सारे विधिवत उनके चरणाद प्राण किया, सब किया, करने के बाद कोई बुला के अब सभी ब्राह्मण तो काम दाम बंद करके बैठे थे, बोले बाद में होगा, पहले उनको संतुष्ट किया जाए, ऐसे ब्राह्मण आए हैं। तो बोले आप बताओ आपकी इच्छा क्या है? हम महादानी, आप नाम सुने, हम आपको तृप्त करना चाहते हैं, कुछ अब लेना ना, मैं जाचक हूँ, मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ, और किस लिए? आपको समझ, हमें समझ में आ रहा है ना, मुझे कुछ चाहिए मांगना है। अच्छा आप जाचक बने, मैं तो देने के लिए खुल्लम खुला बैठा हूँ। बोलिए क्या चाहिए? ये चाहिए, ये दे दूँ, ये दे दूँ, ये दे दूँ, ये दे दूँ, पूरा लिस्ट पढ़े। तो उनके बात को सुन करके छोटे ब्रह्मचारी रूप में वामन देव कहे, बोले देखो आपका जो बोली है कहना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके परिवार के, आपके हेरिडेटरी वंशानुक्रम ऐसे है, आपके पिता, उनके पिता, मैं जानता हूँ उनको, सब हिरण्यकश्यप आदि का नाम लिए सब। बोले ये सब इतने प्रहलाद आदि बड़े बड़े सब थे, महादानी है, तो आप तो उनके हिसाब से क्यों नहीं कहेंगे, बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन बात है कि मैं तो संतुष्टि ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का एक महान गुण क्या होता है? संतुष्ट रहना। जितने मिलता है इसमें ज्यादा जद्रुच्छ लाभ संतुष्ट, ज्यादा लोभ करने से आजकल के ब्राह्मण सारे लोभी होते हैं। असली ब्राह्मण का गुण होता है निर्लोभ होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, जो जिसमें संतुष्ट रहे। तो बोले मैं तो संतुष्टि हूँ, मैं पक्का ब्रह्मचारी ब्राह्मण हूँ, मुझे थोड़ा चाहिए, जितना चाहिए मैं इतना मांगूंगा। ना अरे कितना चाहिए बोलो तो सही, खोल कर बोलो, ये दिला दूं, ये दिला दूं, ये दूं। नहीं मुझे बात है कि मैं थोड़ी भूमि चाहिए, मुझे जमीन चाहिए था, मुझे जमीन स्टेट लिख दूं, कोई पूरा राज्य दे दूं आपको, इतने दे दूं। ना राज्य फाज्य मैं अकेला ब्रह्मचारी क्या लेकर मेंटेन करूंगा, इतने कर पाऊंगा, इतने गोदान दे दूं, गाय लेकर मेरे गौशाला नहीं, क्यों लेकर पालेगा उसको, ये कर दूं, को ये दे दूं, जितने सारे नाम बता। बोले नहीं मेरे घर घाट नहीं, धन रत्न लेकर मैं कहाँ रखूं, थोड़ा मुझे जमीन चाहिए, थोड़ा बोलो, कितने बोलो, 200-500 एकड़ को इतने दे दूं। बोले नहीं तो बहुत, बोले बोले ठीक है आप बोलो फिर क्या चाहिए, खुलकर बोलो, सब सुनना चाह रहे थे क्या बोलेगा। बोले देखो ब्राह्मण का जो असली गुण है संतुष्टि, तो मैं जितने में संतुष्ट हो जाऊं मैं इतना चाहूंगा ना, बोलो किससे संतुष्ट हो जाए ना, मुझे 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग, 3 पग जमीन, अरे कोई एकड़ के हिसाब नहीं, डिसमिल के हिसाब नहीं, 3 पग चाहिए। वो फिर कितने, कौन सा पग में ना, मेरे पैर में, मेरे पग में, वो तो छोटे ही थे, स्केल देखे इतने बड़े बड़े पैर है, छोटी छोटी 6 इंच भी नहीं होगा, हाँ हमारा पैर 6 इंच होता है, 9 इंच वाला होता ना, भगवान के पैर में 2.5 इंच वाला होगा शायद, 2.5 इंच का स्केल होगा ना, नहीं हमारा चप्पल 9 इंच का होता ना, हाँ तो भगवान जो बटू होंगे तो उनका तो 2.5 इंच होंगे शायद, 2.5 इंच का पैर दिखाए स्केल। बोले इसी पैर में 3 पग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, इसमें मैं अपना मैंने गुजारा कर लूंगा, अरे इतने में ना, हाँ चल जाएंगे, इसमें 3 पग जमीन दे दो। तो बलि महाराज सुन करके रूठ गए, बोले तुम क्या नालायक नादान लड़का, पढ़े लिखे नहीं, कोई स्मार्ट नहीं है तुम्हें, ब्राह्मण हो लेकिन थोड़ा समझ होना चाहिए, क्या तू बच्चा है सचमुच, तेरी बुद्धि भी बच्चा है, अभी मैच्योर्ड नहीं है तुम्हें, देखो तू इसे क्या मांग रहा है, तू जानता है मैं कौन हूं, तो तेरे हिसाब से मांगे, तो मेरे तो देखो दुनिया क्या कहेगा, मुझे दुनिया कहेगा देखो ये बलि महाराज, महादानी बलि, ये छोटा सा बालक है, उसको मांगना नहीं आया बेचारा, लेकिन उनको देने भी नहीं आया, मेरे बदनाम होगा, मेरे पोजिशन देख करके मांगो, तो इसे क्या मांग रहा है, तेरे पैर दिखा रहा है इसमें 3 पैर, नहीं 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 राजा जी मुझे तो इतने चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट इसमें हो जाऊंगा। जितने समझाने लगे बलि महाराज इतने प्रकार से माने नहीं, बोले ना मेरा गुण, मैं इतने तृप्त हो जाऊंगा, तो वो कहाँ, कौन सा क्षेत्र में बोलूँ, यहाँ दे दूँ, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कहाँ दे दूँ फटाफट, पूरे त्रिलोकपति हूँ, ये 3 पर्जन कहाँ दे दूँ बताओ। बोले नहीं नहीं पहले बाद मांगूंगा, पहले सत्य पाठ करो, संकल्प करो, एफिडेविट साइन करो, देंगे कर। अरे दोबारा अपमान भरा कर रहा है, इतना सारा जमीन मांग रहा है, 2.5 इंच पैर में 3 मतलब 1 फिट भी नहीं होगा, उसके लिए मैं संकल्प पाठ रजिस्ट्री एफिडेविट साइन करूंगा, ना नहीं, ये बाद में मुकर जाएंगे, मैं नहीं भाई ऐसा नहीं जानते, आपने मैं जानते हो, सत्य पाठ करो, बाद में आप देने के समय मुकर जाएंगे, नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा ऐसे कर। अरे क्या बात कर रहा है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तीन लोक के राजा हूं, मैंने सब कुछ दे सकता हूं ना, वो है लेकिन मेरे पैर में तीन पैर, आप मुझे डाउट है दे पाएंगे कि नहीं, आप साइन करो, अग्रीमेंट साइन करो सबके सामने। बोले महाराज, बोले क्यों मुझे इसे अपने डाल रहा है, जब बातचीत होती तो गुरु जी सुने, बोले अरे बात ऐसा कर रहा है तो आ करके चश्मा खोल कर देखे। तो बोले बली होशियार, मैं देख लिया ना, क्या ये ब्राह्मण बालक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पहचान लिया, देख लिया, मैं दूर से देख रहा था, मुझे लग रहा था कुछ, अब तो पहचान लिया कौन है गुरु जी। अरे वो साक्षात विष्णु है, तुझे ठगने के लिए आया है, ठगने के लिए आया। अब वो एफिडेविट साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार, स्टाम्प पर लाकर लिखा पड़ा हो चुका है, खाली स्टाम्प मारना है, ठप्पा लगाना है, मतलब आजकल के जो एफिडेविट पहले जमाने का संख्या में जल ले करके जलदांतरी सत्य करने वाला है, इसी समय वहां से रोक दिए। बोले बिल्कुल मत दो होशियार, ये मत मानो, डुप्लीकेट है, सही ब्राह्मण नहीं है, बनी बनाई ब्राह्मण ड्रेस पहनकर आया अभी मेकअप करके, हाँ अब तुझे देखा रहा है तो 2.5 इंच का स्केल, लेकिन नहीं नापने समय दूसरा करेगा, बिल्कुल ठगेगा तुझे। तो बहुत समझाया उनको, बहुत ऋचा पड़ा, बोले अभी तुम एफिडेविट लिखा पड़ी हो चुका है, सबके सामने बयान हो चुका है, अब मेरा मान अपमान हो जाएगा ना। अरे कोई बात नहीं, वैद्य के ऋचा पढ़ा पढ़ा कर समझाया, बोले ऐसे ऐसे होता है कभी कभी, इस भारी अवस्था में ना कर देना सही है, ना करने से कुछ संपत्ति बच जाएगा, और हम लोग हैं तेरा यज्ञ कल्याण पद का, हम क्या मिले, हम तो दक्षिणा के लिए कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, तू उनको दे देगा तो सब ले लेगा तेरे से, ना सब ले लेगा, छोटा सा तो बालक है। अरे छोटा तू समझ नहीं रहा, मैं देख लिया, डुप्लीकेट है वो, सब ले लेगा तेरे से, कुछ नहीं बचेगा। तो गुरु जी ने जितने समझाए जितने समझाए, लेकिन बलि महाराज को लगा कि नहीं नहीं कम, मुकरना नहीं चाहिए, इतने श्रद्धा से मैं उनको गेट से बुलाकर लाया, पैर धोया रखा, कितने गुलशन चेहरा है उनका, कितने सुंदर बालक है, वो मुझे ठगेगा ऐसा कर, नहीं कर, ब्राह्मण है बिल्कुल, इतना सुंदर स्वर में सामवेद गान कर रहा है, मेरा तो पूरा पक्का भरोसा है। अगर गुरु जी आप बोलते हैं कि वो भगवान विष्णु है तो फिर तो दे देना ही चाहिए ना, क्यों, अगर मैं विष्णु को नहीं दूंगा, विष्णु एक थप्पड़ मान मेरे से ले लेगा, विष्णु तो सर्वशक्तिमान है, मैं उनके सामने क्या कर सकता हूं, एक धक्का मार के थप्पड़ मार मुझसे छीन लेगा, सारे मिनट ले सकता है। तो शुक्राचार्य बोले हाँ वो ले सकता है, लेकिन नहीं लगा, क्योंकि तू मेरा भगत है ना, तू ब्राह्मण की सेवा करता है, यज्ञ दान करता है, नहीं लगा, विष्णु ऐसा नहीं करेंगे, मारपीट करेंगे नहीं तेरे से, तू मत दो ना, अगर मैं नहीं दूं बड़ मुकर जाऊं तो मारपीट करने करेंगे नहीं, क्यों मैं दोष हो जाएगा मेरा, तो पीट सकते हैं, ले जा सकते हैं छीन करके, तो इससे बेटर तो यही है कोई मारपीट होने से पहले मैं पहले दे दूं, जब विष्णु मांगने आए हैं तो इनसे बढ़कर के दानी दाता माने मांगने वाला मैं कहां से मिलेगा मुझे, आप किसको, कोई किसका ब्रह्म हत्या गो हत्या बहुत किसका कोई प्रेत कर्म शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो पंडित जी बोलते हैं थोड़ा दान दे दो, थोड़ा ब्राह्मण भोजन करा दो, थोड़ा दान दान कर दो, अब ढूंढते हैं किसको दान देने से मेरा बढ़िया सा काम बन जाए, बढ़िया सा पुण्य हो जाए, सारे फल मिल जाए, अच्छे दान लेने वाला दाना ब्राह्मण आजकल मिलते कहाँ से, वो देव ले आकर सिगरेट पी गए, कोई शराब पी गए, कुछ क्या कर दिए, तो आजकल दान देने वाले तो बहुत हैं, दान लेने वाले कैंडिडेट ढूंढ कर मिलना बहुत दुष्कर है, किसको दें, सही दान लेने वाला कौन से मिलेगा जो दान का सदुपयोग हो जाए। तो बड़े महाराज बोले गुरु जी जब साक्षात विष्णु ब्राह्मण बनकर आए तो उनसे बढ़कर तो कोई लेने वाला तो हो ही नहीं सकता, जब वो ब्राह्मण बनकर जाचक बनकर आए तो उनसे बढ़कर मैं कैंडिडेट कहाँ ढूंढने जाऊं, आपने आप खुद आए यहां बिन बुलाए, तो उनको तो दे देना चाहिए, ये तो महा महा पुण्य होगा, कर्म कल्याण होगा। तो गुरु जी बोले तो भाई दे देगा तो हमारा क्या होगा, पेट पटना हमारा भी सब है, तो सब ले लेगा तो हमारा दान देखना फिर नहीं चलेगा हाँ। तो गुरु जी तो भाई अपने हिसाब से थे, बहुत मना किए जितने समझाए, लेकिन बलि राजा नहीं माने, नहीं माने तो सबके सामने गुरु जी को त्याग दिए। देखिए भगवान के लिए हरि के लिए अगर निज गुरुदेव को भी त्याग करना पड़े, त्याग करने के बाद महाजन प्राप्त हुए, उन महाजन बन गए, गुरुदेव को त्याग करके महाजन बने। लेकिन अगर बाकी कोई कारण के लिए गुरु त्याग करे तो नरक गति होगा। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी किया जा सकता है। भगवान के लिए गुरु त्यागे बलि, भगवान के लिए अपने भाई को त्याग दिए कौन, विभीषण त्याग देना रावण को, भगवान के लिए अपने पत्नी को त्याग दिए कौन है ने? पता नहीं कौन अपने पति को त्यागे, ठीक है आप लोग बोलिए कौन पति को त्यागे। अरे यज्ञ पत्नी है, गोपियां है, कितने सारे हैं, तो सब कुछ हो तो सब कुछ त्याग दिए है ना नहीं? तो ये सब त्याग किए, पिता को त्यागे कौन, प्रहलाद ने है ना नहीं? तो इसलिए भगवान के लिए कुछ भी करो आपका बड़ाई होगा। तो बलि महाराज को अपने गुरुजी को नकार करके साइन किए, शंख में जल दिए, जल देते समय वो आकर बैठ गए थे, बोले फिर भी नहीं मानता मक्खी मन को बैठे, तो भगवान ने एक आंख कणा कर दिया उनका, शुक्राचार्य खींच करके उनको नहीं पता था, जो भी आभेद करके सत्य प्रतिज्ञा कर लिए। करने के बाद बोले ठीक है अब कहा, बोले ले, बोले ठीक है रेडी नहा रेडी। तब जैसे नापने का समय आया, भाई नाप के ले लो तीन पैर, तब जो नापने के समय आया जो स्केल दिखाए थे 2.5 इंच का, वो इतने मीटर बढ़ गया, 2.5 मिलियन करोड़ योजन शायद हो सकता, इतने बढ़ गया कि एक पैर में संपूर्ण धरती, एक पग में। बलि महाराज देख रहे हैं, तो बोना ये पैर इतने बड़ा बढ़ गया। तो वही काम को कहा गया सलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामनम, ये अद्भुत वामन था, क्या क्या छल कर दिया, छलना शब्द भगवान से आया, छल प्रतारणा, सबसे पहले छल मतलब क्या, चीटिंग करना ना, चीटिंग किया उनके साथ, क्यों चीटिंग किया, क्योंकि जो कंडीशन हुआ देखा है, एक नाप एक स्केल देखा है, और लेने के समय में दूसरा। आप जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार एक सैंपल दिखाएगा और सप्लाई देने दूसरा कुछ दे देगा, तो आप बोले वैसे चीटिंग किया हमने, तो भगवान ने सरासर चीटिंग किया बलि के साथ। लेकिन चीटिंग करने के बाद भी एक पैर में तो सारे नाप लिए, कम संपूर्ण धरती नाप ली एक पैर में, बलि बेचारा करेगा क्या, एग्रीमेंट साइन कर चुका है, सब गया, पूरा धरती गया एक पैर, दूसरे पैर में अंतरिक्ष, पूरा अंतरिक्ष नाप लिए। बोले अब क्या बाकी है बताओ, स्वर्ग मर्त्य पताल तो ले लिया दो पैर में, तीसरा पैर है तेरे पास, बड़ी बड़ी बात कर रहा था मैं दे दूंगा, है तेरे पास जमीन बताओ, बदमाश एग्रीमेंट साइन किया। भली तो थत्थर कांपने लगा, बोले अरे इसको तुम बुलाए उनके लोग, आपने नंद सुनंद आपने गण को बुलाया, फिर अपना स्वरूप दिखा दे। बोले मुंह में कौन है देखो अभी, फिर अपने स्वरूप में आ गए, आपने सिक्योरिटी को बुलाया, पुलिस को बांधो उसको, बदमाश एग्रीमेंट साइन किया देने के लिए अभी पीछे हटता है, दो तीसरा पैर दो, तो अरेस्ट कर लिया उनको, नाग पास में बंधवा दिया उसको, बलि को बांध करके डांटे खूब, डांट पिटाई करने लगे, तो तभी प्रहलाद महाराज दौड़कर आए, बोले क्या है प्रभु, तो मेरे से वचन दिए थे कि मेरे वंश में किसी को मारेंगे नहीं, ऐसा क्या कर रहे हैं, दौड़ कर आए, आकर जो खड़े होकर देखे बलि को देखे उनको देखे, रो पड़े, बोले हाय 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 प्रभु मैं तो हार गया, मैं आपका जन्म से लेकर के आजन्म भजन किया, कितने कष्ट सहा, कितने कठिन कष्ट सहा आपको भजन करने के लिए, ऐसा प्रेम तो मुझे आपने नहीं दिया अब तक, क्योंकि कोई किसी को डांटता है कब डांटता है। एक बात अब देखिए, कभी कभी आप आपके छोटा बच्चा स्कूल से आकर खेल रहे हैं, सारे दोस्त उनके साथ खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, आप रास्ता से आए मंदिर गए थे, लड्डू लेकर आए हैं, तो देखे बच्चे खेलने में, ए बच्चों आ जाओ, सबको लड्डू देंगे एक एक, है ना, प्रेम है सबको। लेकिन दूसरे दिन आप आ रहे हैं, देखें कि आप बच्चे कोई गलत काम कर रहे हैं, जो काम नहीं करना चाहिए, अपकर्म को खराब काम कर रहे हैं, तो आप सब लड़के को पकड़ कर पिटाई कर सकते हैं, डांट सकते हैं, नहीं, डांटने के लिए केवल आपने बेटा को डांटेंगे, दूसरे किसी को नहीं कहने का अधिकार नहीं आपका, प्रसाद देने के लिए सबको देंगे, डांटने के लिए आप नहीं बेटा को डांटेंगे। तो जिसके साथ अपनापन नहीं होगा उसको डांट नहीं सकते, दे सकते हैं उसको, लेकिन उसको डांट नहीं सकते। डांटना तो केवल अपनों को होता है, जिसके अंदर आपका अधिकार है जिसके ऊपर। तो प्रह्लाद महाराज उसको देखकर बोलते हैं, प्रभु आप बलि को डांट रहे पीट रहे, मतलब इतने अपना मान रहे, मुझे तो आप ऐसा नहीं किए, मेरा तो सारे भजन बेकार गया। जो संबंध जो प्रेम आप बलि के साथ कर रहे मेरे साथ तो नहीं किए। वो देख करके रोने लगे, क्या प्रेम है भगवान। और जो बलि का, क्योंकि महाराज थे, त्रिलोकपति थे, जो उनके बड़े बड़े मंत्री सेनापति थे, सब समन ले अस्त्र से लेकर दौड़ पड़े। बोले क्या हमारे महाराज को चीटिंग कर रहा है, उनको एक एग्रीमेंट क्या था दूसरा नाप रहा है, चीटिंग करके फिर बांध करके डांट रहा है महाराज को, सब अस्त्र से लेकर के पिटने के लिए। जब दौड़ कर आए सेनापति वृंद, बड़ी बामन देव ने अपने गण को तो पहले बुला रखे थे, बोले ये आ रहे हैं उनको खबर लो। अरे विष्णु दूत ये क्या ऑर्डिनरी सैनिक, उनका क्या करेंगे, ये तो कुमार विष्णुदेव, विष्णु दूत उठा कर ये दो थप्पड़ मारे, सब मरे, सब मार के भगा के हटा दिए सब। शुक्राचार्य बोल रहा था, देखा देख रहा था मैं, बोल रहा था मान्य, देखा गया सब गया। तो बलि महाराज थी तो डांट रहे थे, बोले दो तीसरा पैर कहाँ है तेरा पास, कहाँ है तेरा पास। तो बलि महाराज बोला कि मैं ठीक है, मैं कहीं देखूंगा, लेकिन आपका तो पैर तो दो है, तीसरा पैर तो है नहीं आपका, मैं दूंगा किसी, दो पैर में तो दो जाए घर के बैठा है, तीसरा पैर है कहाँ आपका। बोले तीसरा पैर कहाँ है, आप जमीन दो मैं निकालता हूँ, है मेरे पास पैस। तो उनके पत्नी विंध्यावली आकर के बोला, पति आप क्यों डर रहे हैं, ये तो स्वर्ग मर्त्य पाता त्रिलोक सब आपका था, आपका जो संपत्ति था उसको दो पैर में ना ले, लेकिन आप मालिक आप तो है ना, आप अपने आपको तो दे नहीं, अपने आपको दे दो। तो पत्नी के कहने में तो बुद्धि आई, तो उन्होंने बोले आप पैर दिखाओ मैं तीसरा जमीन दे रहा हूं। तो तुरंत अपने कमर से तीसरा पैर निकाल दिया। इसलिए बोलते हैं छड़ेसी विक्रम ने बड़ी अद्भुत वामनम, ये अद्भुत है, एक तो छोटा छोटा पैर कितने बड़ा किया, फिर तीसरा पैर निकाल दिया। और निकाल करके बोले कहां रखो, सर दिखा दिया, रखो मेरे ऊपर, अब मेरे जो था सब ले लिए, अब मैं बाकी हूं, मुझे भी ले जाइए। आत्मदान कर दिया, अपने आप को दे दिया, बोले मुझे भी ले लो। सारे मंत्री संतरी सेनापति गुरु जी सबके सामने अरेस्टेड बलि, सर दिखा दिए, सपत्निक दोनों पति पत्नी सर दिखा दिए, भगवान ने चरण धर दिए। देवताओं ने पुष्पवृष्टि किए, नगड़ा बजाए, बोले हाय हाय, अभी तक कितने बड़े बड़े जोगिंद्र मनिंद्र ध्यान ज्ञान करके भगवान के चरण को पाए नहीं, हाथ नहीं लगा पाए, सर कौन लगाएगा। ये असुर राज बलि क्या था उनका, उनके सर के ऊपर जबरदस्ती अपने पर रखते हैं, ये महाकृपा कैसे हुआ। सब आश्चर्यचकित होकर देखे महाकृपा कैसे कैसे है, फिर बोलेंगे आपको कभी रहस्य क्यों ऐसे महाकृपा किए। जो भी हो तो उनका पैर पर रखे, जैसे बलि आत्मदान कर लिया, तीन पद पूरा कर लिया, तो भगवान का हाल खराब होने लगा, अब क्या करूं। वो तो अपना सत्य तो रख लिया, अब मुझे मेरा सत्य रखना पड़ेगा, कैसे सत्य रखूं। उनसे तो ले लिए सारे संपत्ति, छीन करके मांग करे लेकर के इंद्र को दे दिए, बोल लेकिन वो तो मेरे मस्तक फेंक दिया, मुझे आत्मदान कर दिया। भगवान कहते हैं कोई गंडू से जल मात्रेण जले न, एक पैर तुलसी एक पत्ता तुलसी की, एक गंडूस जल कोई उगर मुझे दे दे नमो नारायण कह करके, मैं आपने आपको उनको दे देता हूं। और वो तो मुझे पूरा सपरिवार आत्मबलिदान कर दिया, तो मैं क्या दूं उनको, क्या दूं। सोचने लगे भगवान मैं क्या दूं उनको, मुझे सब कुछ दे दिया उन्होंने, मैं ठग करके ले लिया उनसे सारे संपत्ति, अब उनको क्या दूं, कोई उपाय नहीं मिला क्या दूं। तो बोले बलि, बोले अब मैं आपके चरण तले रहूंगा, ओह और बात मत कहो, सीधा उनको दबा दिए सुतल लोक में। सुतल लोक कहते हैं बीतल स्वर्ग, वीर स्वर्ग, जो स्वर्ग में इंद्र रहता है सची के साथ, इस स्वर्ग का चार गुना ऐश्वर्य ज्यादा है, इस सुतल स्वर्ग बिल स्वर्ग में इतने हाई ऐश्वर्यवान लोग दे दिए उनको। बोले यही रहो, इतने भी संतुष्ट नहीं है भगवान, बोले इतने दे दिया, इतने में बहुत छोटा काम दिया, एक स्वर्ग दे दिया, कौन सा बड़ा दे दिया, अनंत कोटि ब्रह्मांड के पति एक स्वर्ग दे दिया, ये बड़ी बात है, मुझे सब कुछ दे दिया, मैं ही स्वर्ग ही दूंगा। बोले ना, फिर क्या करूं? बोले बलि तुझे कुछ चाहिए? अभी हाथ जोड़ के बोलने लगे, बोले बलि तुझे कुछ चाहिए क्या? बलि तो अभी भगवंत के चरण स्पर्श पा करके बुद्धि शुद्धि सब सुधर गया था, बिल्कुल निष्कलंक निर्मल हो चुका था हृदय, और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु जब मेरे ऊपर इतने कृपा किए, मेरे सब कुछ ले लिए, तब बस मुझे तो केवल यही प्रार्थना है, मैं 24 घंटा और किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, आपके कृपा सिद्ध हुए रहना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ, बस मुझे यही दीजिए कि मैं आपके दर्शन सदा करते रहूँ। पहले गया, फंस गया, मैंने फंस गया, मुझे हमेशा दर्शन, हाँ मैं जब जो काम में जाऊँ आऊँ आपके दर्शन करते रहूँ। बोले बस अब तथास्तु करना ही पड़ा। तथास्तु करने के बाद ड्यूटी में आ गए। क्या ड्यूटी में? सिक्योरिटी बने, चौकीदार बनना पड़ा। बलि तो रहा घर में अपने राजभवन में, क्यों बोलते हैं क्यों चौकीदार बने? आपको बोला ना, मुझे वरदान मांगा कि जब मैं आऊंगा कहीं से जाऊंगा, आऊंगा तो आपको देखूंगा, जब घर से निकलूंगा आपको दर्शन हो, जब उससे घर जाऊंगा तो आपको दर्शन हो, तो गेट की पर खड़ा रहना पड़ा कि द्वारपाल बनकर, द्वारपाल बनकर खड़े रहे। हमारे जो चौकीदार होते हैं कितना, 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करते। बोले अगर रात को आएगा तो फिर मैं पोस्ट में नहीं होगा तो फिर कैसे पूरा होगा, दर्शन नहीं करूंगा। अगर दिन के दोपहर में रात दोपहर में कभी भी आ जाए तो 24 घंटा ड्यूटी में रहना पड़ा, क्योंकि बाई चांस इसमें बलि आ जाए तो फिर वादा पूरा कैसे होगा, वचन दिया हूं कि हमेशा हमारा दर्शन करना चाहिए बाहर निकलते। 24 आवर्स चौकीदार बनकर वहीं खड़े रहे। अब तो गए थे बामन बनकर मांगकर ला के देने के लिए, बंद गए, आ नहीं रहे। बैकुंठ में लक्ष्मी वेट करता रहता है, फोन करते, बोले क्या हो गए, मिल नहीं रहे, बिजी आता है, स्विच अप आता है, क्या बात है भाई, परेशान हो गई। परेशान होकर के एक दिन नाराज जी के बोले, हमारे वो कहाँ गए पता नहीं, गए थे काम के लिए ना, और मांगने के लिए गए थे बामन मंत्र, मांग अब तक नहीं मांग पाए क्या? ना रे, मांग रहे थे लेकिन फंस गए ना, कहाँ है बताओ सही, इतने घर नहीं आए ना, ड्यूटी में है। सारे दुनिया अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, समग्र संसार उन्हें नौकर है, वो क्या ड्यूटी कर रहे हैं, किसका ना है, चौकीदार बने हैं, चौकीदारी कर रहे हैं, अरे वो किसका चौकीदार कर रहे हैं ना, सुतल लोक में ड्यूटी में है अभी भी ना, मुझे पक्का एड्रेस देंगे, मैं जाऊंगा देखने, आप थोड़ा बुला लेंगे, मैं बुलाने से नहीं आएंगे ना, अरे मेरा नाम बताना, मेरा नाम काश का नाम बताने से नहीं आएंगे, ड्यूटी 24 आवर ड्यूटी में है, ड्यूटी छोड़कर कैसे आएंगे। बोले अच्छा नहीं आएंगे तो मुझे थोड़ा बता, मैं जाऊँ तो लक्ष्मी जी को एड्रेस बताता, बता दिया नारद जी ने, तो लक्ष्मी जी आई वैकुंठ छोड़ करके सुतल लोक में आकर के पूछताछ करके गई, मेन गेट पर देखा तो खड़े ड्यूटी में खड़े, बिल्कुल बैठ भी नहीं सकते। आजकल इसके चौकीदार तो सीट पकाकर बैठ जाते, सो जाते। बोले नहीं कभी आएगा कि देखेगा कि चौकीदार बैठा हुआ नहीं, बिल्कुल मालिक जब आएंगे तो बिल्कुल साइड में खड़ा रहना, फ्रंट यूनिफॉर्म में खड़े हैं। अपने पति भले कोई ड्रेस पहने, भाई धोती कुर्ता ना पहने, पैंट शर्ट पहने कि हाफ पैंट पहने, गामछा पहने, तो पत्नी तो पहचान लेगी ना। बोले आप इधर इतना दिन से आए, क्या कर रहे हैं इधर? ना क्या करूं, ड्यूटी में हूं, घर नहीं जाएंगे ना, घर छुट्टी मिलेगा तब जाऊंगा। छुट्टी कब मिलेगा, होली में या कोई छुट्टी, क्या पता छुट्टी जब सैंक्शन करेगा मालिक तब ना, ये कोई गवर्नमेंट नौकरी थोड़ी, प्राइवेट है प्राइवेट नौकरी, जो एक व्यक्ति का नौकरी है ना, गवर्नमेंट का तो जो छुट्टी आप जबरदस्ती ले लेंगे, संडे मंडे सब कर लेंगे छुट्टी। बोले तो प्राइवेट है, वो घर के मालिक को जब छुट्टी देगा तब ना, कौन घर के मालिक है, बलि महाराज है, असुरराज बलि ना, तो घर नहीं आएंगे ना, छुट्टी सैंक्शन हो कैसे सैंक्शन, जाकर उनको बोलो अगर छुट्टी देंगे तब मैं आऊंगा ना, आप जाकर बोलो ना, मैं पोस्ट छोड़कर नहीं जा सकता, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, पोस्ट छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, आप जाओ जाके छुट्टी मांगो, अगर सैंक्शन होगा तो मुझे आगे दिखाना, साइन किया तो चलेंगे साथ। तो बेचारी भगवती लक्ष्मी को जाना पड़ा जा करके एप्लीकेशन देना पड़ा, साइन करके सिक्योरिटी तो हुई थी, अलाउ कर दे अंदर, बोले जाओ, जा करके वो बिल्कुल दरखास्त पत्र लेप करके टाइप फाइप करके अब बिल्कुल सब फॉरवर्ड कर, मैंने गवर्नमेंट को अप्लाई देने के लिए सब फॉरवर्ड करना पड़ता ना सर, स्टाम्प फाम पेपर लगा करके सब कुछ करके अप्लाई किए। हाँ तो बलि महाराज आए, बोले कोई एक महिला आई है कहीं से और आपने कुछ आवेदन करना चाहती है, क्या आवेदन? ना जो चौकीदार पोस्ट में है उनका छुट्टी के लिए आवेदन करना चाहती है। वो क्यों उनके लिए, वो क्या लगेगा उनका कि उनकी छुट्टी के लिए वो क्यों मांगती है? क्या मांगती है बोले क्या बताएगा वो शर्म के मारे। लक्ष्मी क्या बताएगी? तो इसके मारे तो लक्ष्मी जी बोले बोले नहीं कुछ प्रसन्न करना पड़ेगा बलि महाराज। बोले महाराज क्या दोकर, कोई ब्राइब दो, लांच दो, खुश हो जाएंगे? बोले क्या करूं मैं, क्या देकर उनको खुश करूं कि मेरे एप्लीकेशन साइन कर दें, सैंक्शन कर दें छुट्टी। तो जा करके लक्ष्मी जी बलि महाराज के पास पहुंचे। जिसे बलि महाराज आए, बलि बहुत भद्र थे, भगवान के भक्तों का एक गुण होता है, सारे नम्रता आदि गुण सब उनके अंदर आ जाता है, बहुत नम्र भद्र थे। आके के माता जी बोलिए क्या बात है? बोले कोई बात नहीं, तुरंत आपने निकाल करके साड़ी से धागा बांध करके अपने हाथ में बांध दिए, बलि महाराज के हाथ में बांध दिए। सबसे पहले जो राखी बांधते ना उसका ही कारण है, वहीं से शुरू हुआ, रक्षा बंधन किए, रक्षा कवच। बोले क्यों बांधा? ना मुझे आपके बहन करके मान लीजिए, मैं आपके छोटी बहन हूँ। अच्छा, मेरे हाथ में कवच बांधे, राखी बांधे, अपने बहन करके क्या चाहिए, क्या मेरे से चाहते हैं आपने? ना भाई बहन को सुरक्षा देगा और क्या चाहिए, क्या रक्षा चाहती है? बोले मैं वचन देता हूँ, ना आप वचन पूरा करेंगे ना हम वचन पूरा करेंगे, ना जो चौकीदार है उसे छुट्टी सैंक्शन कर दीजिए। तो राखी बांध करके भाई से ये मांग करके छुट्टी लिए थे, नहीं तो आ नहीं पा रहे थे। ये हाल किए, इसे अवतार बन करके भगवान फंस जाते पूरी तरह से, है ना? तो बामन बने, कुर्म बने, ऐसे अनेक अनेक अवतार बनते हैं। अनेक अनेक अवतार के बाद में, 22 अवतार गिनाने के बाद में, तो फिर सिद्ध गोस्वामी कहते हैं कि एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मुनयंती युगे युगे। एते है जो पुरुष अवतार से शुरू करके कल के अवतार तक जितने अवतार मैंने गिनाया, एते है, ये सारे उनमें अंदर आ गए। ये जो अवतार क्यों ऐसे बोलते हैं श्लोक गोस्वामी लोग कहते हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी अवतार का गिनती कराते कराते भगवान की लीला गिनाते, तो भगवान को भी गिना दिए। 1920वां नंबर में कृष्ण का नाम ही ले लिए, कृष्ण बलराम, वो भी अवतार कर गिन दिए। जैसे कह दिए तुरंत उनको याद आया, अरे मैं क्या क्या उनको भी अवतार के लिस्ट में गिना दिया, ऐसे करने लगे। ऐसे क्यों करते हैं? बहुत भारी गलती हो जाती है, ऐसे करते ना सडनली, तो ऐसे जीव काट करके बोले अरे रे 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 रे, अब मैं तो बोल दिया, अब क्या करूं, वचन को लौटाऊंगा। तो बोले कुछ ऐसे वचन कहूं ताकि वो काम ठीक ठाक हो जाए, समाधान हो जाए, तो यही वचन बोलना पड़ा श्लोक को। तो तुरंत ये श्लोक बोले, एते च अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण का नाम लेकर बोले, ये जो कृष्ण जो गिनाया ना लिस्ट के अंदर, जो कृष्ण करके जो नाम आया, ये अवतार नहीं है, ये स्वयं भगवान है। ये श्लोक को संपूर्ण भागवत के परिभाषी सूत्र कहा गया, पूरे भागवत के मूल परिभाषी सूत्र यही है, क्योंकि इसी में ही, जैसे गीता में भगवान को ही कृष्ण को भगवान कर प्रमाणित किया गया, भागवत में इसमें कृष्ण को ही भगवान, स्वयं भगवान करके प्रमाण किया गया। सूत्र को सामने गिना रहे थे, बोले एते च अंश, जितने अनगिनत अवतार में गिना दिया, 22-23 और भी जते जते असंख्य अवतार के नाम बताया, ये सब कौन है? न अंश कला, पुंस का कला है, अंश है, लेकिन जो कृष्ण का नाम लिया था ना, उनको ऐसे मत मानो कि अवतार है, वो तो साक्षात अवतारी पुरुष है, वही मालिक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है, ये बात कह करके तो कृष्ण का ही भगवत्व को प्रतिपादन किए। बोले इसलिए आपको जो कुछ करना चाहिए, जो कुछ कर्म जहां पे रहो जैसे रहो उन्हीं के लिए करो, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करो। जो आप कहते हैं सारे जगत में संपूर्ण लोगों का हित कैसे होगा, मंगल कैसे होगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग बद्ध जीव में, हम लोग सब हैं बंधे हुए, फंसे हुए हैं, किसी परिवार में हो, किसी नौकरी में हो, किसी धंधा में हो, दुकान में हो, मकान में हो, कहीं हो, किसी प्रकार से हो, जो भी कार्य करो मन में उनको सोचो, उनको केंद्रबिंदु में रखो, बस करो, हो जाएगा काम। यही काम करके हम निकल जाएंगे, यही काम करके तो हम बंधे, काम करके कर्म बंधन से फंसे, बंधन मिला, बोले हाँ काम करके फंसा, लेकिन काम करके ही निकलेगा। लोग बोलते हैं काम करके कैसे निकलेंगे, तो बोलते हैं ज्ञानी ध्यानी मानी सब बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई ये काम से फंस गए, इस कर्म बंधन से बचने के लिए यज्ञ करो, तप करो, दान करो, ध्यान करो, योग करो, ज्ञान करो, इसमें से कर्म बंधन कट सकता है। इसमें किसी से कर्म बंधन नहीं कटता है। जोर जोर बंधन ऐसे पड़े रहेगा, कितने दिन कट जाएगा कुछ नहीं होने वाला है। आप कभी दूध खाते हैं, दूध थोड़ा ज्यादा पी लिए तो अपच हो गया तो कैसे ठीक होगा, दूसरा मेडिसिन जरूरत नहीं, दूध से बना हुआ दही खा लो ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार जो काम किया जिस कर्म से आपको बंधन लगा वही काम से ही बंधन कट जाएगा। आपका पैर में एक कांटा घुस गया तो कैसे कांटा निकालते हैं, दूसरे कांटा ला करके, वही कांटा ही अपने कांटे को निकालेगा। तो ही कर्म भी कर्म बंधन क्या करेगा ना, लेकिन हम जो कर्म करते बनते ना, यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकयं कर्म बंधना, दूसरा जितने दुनिया भर के काम करता है से बनते, लेकिन वही कर्म अगर कृष्ण के लिए करोगे तो निकल जाएगा, कर्म क्षय हो जाएगा, है ना। नहीं काल हम जो को बता रहा हूं, कोई आरोप लगाते हैं भक्ति में, हम बोलते कृष्ण अर्पण करते हैं, हम जो करते हैं खाते पीते हैं कृष्ण को चढ़ा दो भोग कर दो, इसमें कर्म बंधन कटता नहीं, क्योंकि इसमें हमारा भावना रहता है कि मैं मालिक, मैं खाऊंगा, मैं पहनूंगा, मैं जो कृष्ण को दिखा देता हूं उनके नाम करके फिर मैं करूंगा। बोले नहीं, होना कैसे चाहिए, मैं कृष्ण का हूं, मेरा जो कुछ है सब कृष्ण का है, ये बद्ध धारणा करके अगर करो तो फंसेगा, बिल्कुल निकल जाएगा कर्म से। एक छोटा मोटा उदाहरण बताता हूं आपको। एक सैनिक है जो लड़ाई के मैदान पर लड़ाई कर रहा है, तो उनका कमांडर उसको बोला, बॉर्डर सिक्योरिटी में लड़ाई कर रहे हो बॉर्डर पर, उन सैनिक बोला फायर चलाओ गोली, तो गोली चलाया उन्होंने, एक्सपर्ट था गोली मारने में, गोली चलाया 50 लोगों को मार दिया, युद्ध विजयी हुआ। तो युद्ध खत्म हुआ, विजयी होकर जब आया तो सरकार ने उनको एक बड़े पदक देगा, परम वीर चक्र, वो बहुत बड़ा पुरस्कार देगा, पदक देगा, है बड़ा वीर है करके घोषणा करेगा, है ना। नहीं तो युद्ध खत्म हो गया, अभी शांत हो गया, अब कोई लड़ाई फड़ाई नहीं, तो छुट्टी अप्लाई किया, तो बड़े पोस्ट में आ चुका है, प्रमोशन हो चुका है, छुट्टी अप्लाई किया, एक साथ में 6 महीने की छुट्टी लेकर घर में आया। आपके हरियाणा वाले ज्यादा फोर्स में है ना सैनिक, तो घर में आया, घर में आप करके आपके गांव में, गली वाले गांव में रहा, तो वहां तो अड़ोस पड़ोस में लड़ाई होता है, एक कुआं होता है वो भी पानी निकालते, वो भी पानी निकालते हैं, तो उनके पत्नी और दूसरे पड़ोसी की पत्नी के साथ झगड़ा हो गई। और वो लड़ाई को छोटी मोटी नहीं होता है, छोटी मोटी पानी के लेकर लड़ाई तो अच्छा लड़ाई हो जाती है, वो लाठी फाठी लेकर आगे मारपीट होने के लिए। वो घर में था, उनका राइफल पास में था, बोला क्या, अरे मैं परमवीर चक्र प्राप्त वीर हूं, यही हाथ यही राइफल में 50 मार गिराया था, आप आते मारने के लिए मुझे पिटने के लिए, उठाया राइफल चलाया, बोले एक का टांग में लगा वो मर गया और बाकी से भाग गए, अभी उनको कौन सा चक्र मिलेगा, हाँ? गले में फांसी के चक्कर मिलेगा, वो पदक नहीं मिले, क्यों, यहां 50 को मार गिरा था वही हाथ में वही राइफल में, वहां तो इतने बड़े अवार्ड मिला और यहां मृत्युदंड, एक को मारा वही व्यक्ति, क्यों, काम तो वही है ना, एक ही काम एक ही हाथ में एक ही बंदूक में किया, लेकिन फल बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है, एक में इतने बड़े पुरस्कार, प्राणदंड, क्यों अंतर हुआ, उसमें अपनापन था ही नहीं, इसमें अपनापन है, मैं मारूंगा, इसमें मैं तो सैनिक हूं, अर्डर आया मार निकले मारूंगा, इसमें मेरे पन नहीं था। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जस्य नाहं, जिसका अहंकार का भाव नहीं है, बुद्धिर्जस्य न लिप्यते हत्यापीसु अमंगलोके न बध्यते, मतलब उनको मर्डर करके कोई नहीं मान सकता। जिनका अहंकार बुद्धि नहीं है, जिनका बुद्धि नहीं लगा जो कर्म में, तो मारने पर भी उनको मर्डर करके कोई नहीं मानेगा, माना नहीं जा सकता, नहीं। जैसे आप है, आपका घर में एक नौकर काम करता है, आप पूजा कर रहे थे, आज फूल नहीं है बगीचा में, फूल नहीं माता जी, फूल नहीं है, उनके आपके पड़ोसी के सामने उनका बगीचा बढ़िया बढ़िया फूल है, जाओ ना ले आओ जाकर के, बोल दिए, वो नौकर है आप माता जी की बात मानने के गया, जाकर फूल तोड़ के ला रहा था, वो घर वाले देखे, ए क्यों ले रहा है घर ना, मुझे क्या हो, माता जी ने भेजी, तब गाली किसको देंगे, वो उसको देंगे, सीधा नालिश करेंगे, गाली देंगे माता जी, वो नहीं घर बैठी है बेचारे, पूजा करते घंटी बजा रहे, सारे गाली नालिश उनके ऊपर जाएगी, क्यों, जो करेगा उसको नहीं, जो कराएगा वो। तो जो मालिक बन रहता है वो ही, हम जो सब करते हैं, जो सब काम सारे क्रिया हैं, कर्म ही नहीं बनता, कर्म बनने के लिए एक फॉर्मूला है, क्रिया जैसे खाना पीना सोना जगना चलना पढ़ना लिखना सारे क्रियाएं हैं, वो क्रिया कर्म कैसे बनता है, वही क्रिया के साथ में अगर आपने आप को जोड़ेंगे, मैं किया तब कर्म बनेगा, नहीं तो क्रिया ही रहेगा, कर्म नहीं बन पाएगा, क्रिया प्लस आई अहंकार इज इक्वल टू कर्म, वो कर्म बनता है। जब तक मैं खाया मैं पिया मैं नहीं खाया तो कर्म नहीं है, बिल्कुल कर्म नहीं लगेगा। कोई बैंक में नौकरी कर रहा है एक कर्मचारी, 10 बजे से जाता है, 5 बजे तक वो कैशियर काम करता है, एक लोहे की जाली अंदर बैठता है, 10 बजे के 5 बजे तो गड्डी की गड्डी नोट गिनता रहता है। कोई छोटा बच्चा गया था, बोले कितने बड़े आदमी, कितने पैसे वाला आदमी, पैसा के ऊपर टेबल में पैसा, बाजू में पैसा, ऊपर पैसा, नीचे पैसा, कितने पैसा के अंदर रहता है वो, तो कितने धन है उनके पास, कितने नोट है उनके पास, वो तो ऐसे माना करेगा। लेकिन वो जो व्यक्ति कैशियर, उनको पता है कि अगर चाय भी खाऊंगा 5 रुपया का तो मेरे सैलरी से जाएगा, मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा, करोड़ों रुपया के ऊपर बैठा हूं, दिन भर उसको गिनता हूं, लेकिन 5 रुपया का भी मालिक नहीं, किसका सारा धन सब बैंक का, ये भावना रहता ना। लेकिन जैसे 5 बजे बैंक से छुट्टी बाहर आता है, रास्ता में एक गड्डी मिला तो क्या करेगा, वो सीधा उठा करके पकड़ में लगा अपना नाम जमा कर देगा, केवल इतने समय ये भावना रहता है, बिल्कुल मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, मैं जो कुछ करता हूं सब बैंक का है, सब बैंक का है उनका राजकरण। जैसे यहां से निकलता है तब अपनापन आता है। ठीक इसी प्रकार हम अगर हमेशा जितने समय तक भगवान का सब कुछ है, मैं भगवान को मेरा सब कुछ, ये भावना से जो भी कुछ खाना पीना सोना जो कुछ करो, आपको एक भी कर्म नहीं लगेगा, बिल्कुल मुक्त होकर रहेंगे। जिस मुहूर्त से मेरा है लगा, अच्छी तरह से लगेगा। अभी आप मैं खोल कर नहीं बताना चाहता, समझ लीजिए हम किस प्रकार हम है, कंठी माला मारे भगवान के तो बने हैं, लेकिन करते क्या है ना, तो कैसे कर्म बंधन लगता है आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे आत्मबुद्धि किया तो लगा बंधन, तो इस प्रकार इस कर्म बंधन लगता है, तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए ही केवल कर्म करना चाहिए, कृष्ण कर्म, मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, जो कुछ मेरे है सब कृष्ण का है, यही भावना को मूल करके। ऐसा नहीं कहते खाना पीना छोड़ करके बाबा जी बनो, नहीं, आप घर में रहो दुकान में जहां स्थाने स्थिता सुधिकताम तनुवांग बनो भी, जो जैसे जहां पर जिस प्रकार रहो, केवल ध्यान में केंद्र में कृष्ण को रखो, बस इतना ही करना चाहिए, कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए, केवल मोड़ना चाहिए, बस डायरेक्शन चेंज कर दो, यहां से यहां कर, इस रास्ता पर जा रहा था यहां हटा कर उस रास्ता पर कर दो, बस इतना ही काम, मुक्त हो जाएंगे, वही काम ही आपको निष्काम कर देगा, मुक्त कर देगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और एक बार, और कैसे कर्म बंधन से मुक्त होना, यही तो भजन है, भगवान को मन में चिंतन करके सब काम करो, भगवान को मालिक मान करके सब काम करो, यही तो भक्ति, यही तो भजन है। ऐसी भजन शुरुआत होता है तब नाम ग्रहण आदि भी, उनके नाम जप, उनके लिए पूजा करो, नमस्कार करो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे भक्ति की क्रिया करते करते हृदय शुद्धि होगा, उनके बात सुनो, जैसे हृदय शुद्धि कंप्लीट क्लियर हो जाए, शुद्धि हो जाएगा तो एक दिन हृदय में वही दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे कोई दर्पण है ना, बहुत दिन का महिला चढ़ा हुआ है व्रत, तो आपने मुंह दिखाई नहीं पड़ता, ऐना तो अच्छा है लेकिन कई महिला चढ़ा हुआ है मुंह दिखाई नहीं पड़ता, तो फिर क्या करते हैं, साफ करते हैं, बिल्कुल साफ हो जाए क्लीन, बिल्कुल आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जब हृदय निर्मल हो जाएगा तो हृदय के अंदर जो हृदयेश्वर बैठे हुए हैं वही साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। एक बार वो अनुभव दर्शन हो जाए तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया खीयते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनिश्वरे, तुरंत सारे डाउट सारे कर्म सारे बंधन तुरंत मुक्त हो जाएगा, सब कट जाएगा, निर्मुक्त शरीर हो जाएगा। तो इसे कह करके सर अवतार का तो पूरे उन लोग ने फिर बताया कि इसी महान ग्रंथ को कौन रचना किया, क्यों रचना किया, कब रचना किया, ये प्रश्न पूछे। यही पूरा कर दें क्या हा? आज जाना है ना आप लोगों को, क्या करूं वही ठीक है, अधिकारी लोग कहते हैं पूरा करना।
सभी को बैठे रहे हैं।